लुका रचित सुसमाचार। लुका के अनुसार सुसमाचार। लुका अध्याय एक। जो कुछ हमारे बीच में होता रहा है, उन सभी बातों के बारे में दूसरे लोगों ने भी लिखा है। परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए उनके शिष्यों ने और दूसरे लोगों ने देखा था। हे थियोफिलुस, सभी बातों की छानबीन करके मैंने सावधानी से सब कुछ लिखने का इरादा किया, ताकि तुम यह जान लो कि जो शिक्षा तुमने पाई है वह पूरी तरह से खरी है। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक पुरोहित था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ हारून के वंश की थी। परमेश्वर पिता की निगाह में वे दोनों खरा जीवन बिताते थे। वे सभी आज्ञाओं और रीति विधियों को बहुत सावधानी से मानते थे। एलिजाबेथ के बांझ होने की वजह से उनकी कोई औलाद नहीं थी और अब तो वे बूढ़े हो गए थे। प्रार्थना भवन में एक बार उसके दल की बारी होने के कारण वह वहां सेवा में लगा था। प्रथा के अनुसार पर्ची उठाए जाने के द्वारा उसे भवन में पवित्र जगह में जाकर धूप जलाने का काम मिला था। धूप जलाए जाने के समय लोगों का एक बड़ा झुंड बाहर खड़ा प्रार्थना कर रहा था। धूप की वेदी की दाहिनी तरफ प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे दिखाई पड़ा। उसे देखते ही जकरिया घबरा गया और डर ने उसे जकड़ लिया। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा,
हे जकरिया, डरो मत, क्योंकि तुम्हारी बिनती सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ से तुम्हें एक बेटा होगा। उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। तुम्हें बड़ी खुशी होगी और दूसरे लोग भी उसके जन्म से खुश होंगे। प्रभु की निगाह में वह महान होगा। वह ना शराब पिएगा और ना कोई नशीली चीज लेगा। वह अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। वह बहुत से इसराइलियों का मन उनके परमेश्वर पिता की तरफ कर देगा। वह एलिया की आत्मा और ताकत में बढ़ता जाएगा, ताकि बहुत से पिताओं के मन को अपने बच्चों की तरफ और अनाज्ञाकारी मनों को सच्चे ज्ञान की तरफ मोड़े, जिससे वे लोग परमेश्वर पिता के लिए तैयार हों।
जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा,
मैं ये कैसे जानूंगा, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी तो बूढ़े हो चुके हैं।
स्वर्गदूत ने उससे कहा,
मैं जिब्राइल हूँ और सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में रहता हूँ। मैं तुम्हें यह अच्छी खबर देने के लिए भेजा गया हूँ। देखो, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, तब तक तुम बोल ना सकोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बातों पर, जो अपने समय में पूरी होंगी, शक किया।
इसी बीच जकरिया के बाहर आने का इंतजार करने वाले झुंड को ये आश्चर्य लगा कि वह इतनी देर भवन में क्यों रह गया। जब वह बाहर आया तो वह बोल नहीं पा रहा था। तब वह समझ गए कि प्रार्थना भवन में उसने जरूर कोई दर्शन देखा होगा। इसीलिए वह गूंगा हो गया था और हाथों से इशारा कर रहा था। जब उसका प्रार्थना भवन में सेवा करने का समय खत्म हुआ, तब वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हुई और 5 महीने तक उसने इस बात को छिपा कर रखा। उसने कहा,
लोगों के बीच में से मेरी बदनामी दूर करने के लिए प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है।
एलिजाबेथ के गर्भवती होने के 6 महीने में गलील के एक शहर नासरत में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम नाम की एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी सगाई दाऊद के वंशज यूसुफ से हुई थी। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा,
खुशी मनाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है और उनकी बड़ी कृपा तुम पर हुई है।
स्वर्गदूत की यह बात सुनकर मरियम उलझन में पड़ गई और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह किस तरह का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा,
हे मरियम, तुम डरो मत, क्योंकि तुम पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। देखो, तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा, जिसका नाम तुम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उस बेटे के पूर्वज दाऊद के तख्त पर उन्हें बिठाएंगे। वह हमेशा याकूब के घराने पर शासन करेंगे और उनका शासन कभी खत्म नहीं होगा।
तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा,
मेरा तो किसी पुरुष से संबंध ही नहीं है, ये हो कैसे सकता है?
स्वर्गदूत ने उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और महाशक्तिशाली की ताकत तुम्हारे ऊपर छा जाएगी, इसलिए जो पवित्र जन पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देखो, तुम्हारी रिश्तेदार एलिजाबेथ भी अपने बुढ़ापे में गर्भवती हुई है, हालांकि वो बांस थी फिर भी उसका छठा महीना चल रहा है। परमेश्वर के मुख से निकली बात असर रहित नहीं होती है।
मरियम ने कहा,
देखो मैं प्रभु की सेविका हूँ, इसलिए जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो।
तब स्वर्गदूत वहां से चला गया। मरियम तुरंत उठी और पहाड़ी प्रदेश के यहूदा नगर में जकरिया के घर जाकर एलिजाबेथ से मिली और उसे बधाई देने लगी। मरियम की बधाई सुनते ही एलिजाबेथ के गर्भाशय में बच्चा उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। ऊंची आवाज में वे बोल पड़ी,
महिलाओं में तुम बड़ाई के लायक हो और तुम्हारे गर्भ में जो है वह भी। मुझे यह मौका कैसे दिया गया कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आए? जैसे ही तुमने मुझे बधाई दी वैसे ही बच्चा मेरे गर्भ में खुशी से उछल पड़ा। वह इंसान सच में सुखी है जिसने प्रभु के दिए हुए वायदों के पूरे होने पर विश्वास किया है।
मरियम बोली,
मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर में खुश होती है, इसलिए कि अपनी सेविका की दीन हालत पर उन्होंने दया दिखाई है। देखो, अब से सभी युगों के लोग मुझे आशीषित कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े कामों को किया है और उनका नाम पवित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है जो उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपनी बांह की ताकत दिखाई है। जो लोग मन ही मन घमंड करते हैं उन्हें प्रभु ने तितर बितर कर डाला है। ताकतवरों को उन्होंने गद्दी से गिरा दिया है और नम्र लोगों को इज्जत का पद दिया है। भूखों को उन्होंने अच्छी चीजें खाने के लिए दी और अमीरों को खाली हाथ भेज दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया। उन्होंने अपनी कृपा की वजह से इज़राइल की मदद की है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वज अब्राहम और उसके बच्चों से वायदा किया था कि वो हमेशा उनके प्रति कृपालु रहेंगे।
वहां पर 3 महीने रहने के बाद मरियम अपने घर वापस आ गई। जब समय पूरा हुआ एलिजाबेथ के एक बेटा पैदा हुआ। प्रभु की दिखाई गई बड़ी कृपा के बारे में सुनकर उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसके साथ खुशियां मनाई। 8वें दिन उस बच्चे का खतना संस्कार करते समय लोगों ने उसके पिता जकरिया का नाम ही उसे देना चाहा, परंतु उसकी मां ने मना करते हुए कहा कि
उसका नाम यूहन्ना रखा जाए।
लेकिन वहां इकट्ठा लोगों ने उससे कहा,
तुम्हारे रिश्तेदारों में तो इस नाम का कोई नहीं है।
तब उन लोगों ने इशारा करके उसके पिता जकरिया से पूछा कि उसकी राय क्या है। उसने एक लिखने की पटिया मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम यूहन्ना है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब जकरिया का मुंह और जीभ तुरंत खुल गए और वे बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। इस बात को देखकर आसपास के सब रहने वाले लोगों पर भय छा गया और उन बातों की चर्चा यहूदिया के पहाड़ी देश में फैल गई। सुनने वाले यह सोचने लगे कि
यह बच्चा बड़ा होने पर कैसा होगा,
क्योंकि प्रभु उसके साथ है और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहने लगा,
इसराइल के परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर निगाह की है और उन्हें आजादी दी है। उन्होंने दाऊद के वंश में हमारे लिए सामर्थी मुक्तिदाता को दिया है, जैसा उन्होंने हमारे समर्पित नबियों के द्वारा जो दुनिया की शुरुआत से होते आए हैं कहा था, अर्थात उन्होंने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब बैरियों के हाथ से छुड़ाया है, कि हमारे बुजुर्गों पर दया करके अपने अटूट वायदे को याद करें, और वह वायदा जो परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम से किया था वह यह कि हम अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उनके सामने शुद्धता और खरेपन से जिंदगी भर बिना डर उनकी सेवा करते रहें। और बेटा, तुम सर्वशक्तिमान जग के स्वामी के नबी कहलाओगे, क्योंकि प्रभु की सेवकाई की तैयारी में उनसे पहले तुम लोगों को सिखाओगे, ताकि उनके लोगों को गुनाहों की माफी से मिलने वाली मुक्ति की जानकारी मिले। यह हमारे परमेश्वर पिता की तरफ से आने वाली बड़ी कृपा से होगा, ताकि जो लोग मौत की छाया में और अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी मिल सके और मेल के रास्ते में चलने के लिए मार्गदर्शन भी।
और यूहन्ना इसराइलियों को सिखाने के दिन तक देह और आत्मा में मजबूत होता गया और जंगलों में ही रहा। लुका अध्याय 2। उन दिनों में अगस्तुस नामक रोमी राजा ने ये आज्ञा दी कि रोमी साम्राज्य के सभी नागरिकों की जनगणना का काम हो। यह पहली जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सभी लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपने अपने नगर के जनगणना केंद्र को जाने लगे। इसलिए यूसुफ, जो दाऊद के वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया के बेहतलेम को गया, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। फिर ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हो गए, और उसने अपने पहलौठे बेटे को जन्म देने के बाद उन्हें कपड़ों में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठसाठस भरे थे। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे रात के समय में मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ प्रकट हुआ, और एक बड़ी रोशनी चमक उठी, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा,
मत डरो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे और सभी के लिए एक खुशी का समाचार है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे।
तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ दूतों का झुंड परमेश्वर की बड़ाई करते और ये कहते हुए दिखाई दिया,
आसमान में परमेश्वर की महिमा और धरती पर इंसान के साथ उनका मेल हो।
और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत वापस आकाश में ओझल हो गए, तो चरवाहे आपस में कहने लगे,
आओ, जो कुछ हुआ है और प्रभु ने हमें बताया है, उसे देखने हम बैतलहम चलें।
तुरंत उन्होंने ऐसा ही किया, और वहां पहुंचकर बच्चे को चरनी में और यूसुफ मरियम को पास में देखा। यह देखकर उन्होंने वह सब कह डाला जो बच्चे के बारे में उनसे कहा गया था। चरवाहों की उन बातों को सुनकर सभी अचंभित हो गए, लेकिन मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। जैसे चरवाहों से कहा गया था, सब कुछ वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करते हुए वे लौट गए। 8 दिन पूरे होने पर खतना संस्कार के समय बच्चे का नाम यीशु रखा गया, वही नाम जो मरियम के गर्भ में आने से पहले स्वर्गदूत ने दिया था। यहूदी प्रथा के अनुसार जब उनके शुद्ध ठहरने के दिन पूरे हुए, तो वे बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए यरूशलेम में लाए। ऐसा यहूदी धर्म में लिखा है,
हर एक पहलौठा परमेश्वर के लिए अलग किया जाएगा।
यह भी कि एक जोड़ा पंडुक या कबूतर के 2 बच्चों को लाकर चढ़ाएं। यरूशलेम में शिमोन नाम का एक ईमानदार इंसान था। वह इसराइल की शांति का इंतजार कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि जब तक वह मुक्तिदाता को देख ना ले, तब तक मरेगा नहीं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह प्रार्थना भवन में आया और जब माता पिता अपनी धार्मिक जिम्मेदारी को पूरा करने बालक यीशु को प्रार्थना भवन में लाए, तब उसने बालक यीशु को गोद में लेकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा,
हे स्वामी, अब अपनी कही बात के अनुसार आप अपने सेवक को इस धरती पर से विदा करें, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मुक्ति को देख लिया है, जिन्हें आपने सब देशों के लोगों के लिए दिया है। सारी दुनिया के देशों को परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए वो रोशनी और आपकी प्रजा इसराइल के लिए महिमा है।
जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया था, उन सब के बारे में बच्चे के माता पिता आश्चर्य कर रहे थे। तब शिमोन ने उनके विषय में भली बातें कहकर उनकी माता मरियम से कहा,
देखो, इसराइल में बहुत से लोग इस बालक को ठुकरा देंगे और इससे उन्हीं का नुकसान होगा, लेकिन दूसरे बहुत से लोगों के लिए वो बड़ी खुशी का कारण होगा। बहुत से लोगों के मन की बातें सामने आ जाएंगी और एक तलवार तुम्हारे प्राण को भेद डालेगी।
अन्ना नाम की एक बहुत बुजुर्ग नबिया थी। वह आशेर कबीले के फनुएल की बेटी थी। उसकी शादी के 7 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था और तभी से वह विधवा थी। वह 84 साल की हो चुकी थी। वह उपवास और भजन कीर्तन के साथ वहीं प्रार्थना भवन में रात दिन गुजारा करती थी। जब शिमोन मरियम और यूसुफ से बातें कर रहा था, वह तभी वहां आ पहुंची और परमेश्वर पिता की बड़ाई करने लगी। हर एक जन जो प्रतिज्ञा किए हुए राजा के आने और यरूशलेम के आजाद किए जाने का इंतजार कर रहा था, उन सब से वह यीशु के विषय में बातें करने लगी। यहूदी नियमों को पूरा करने के बाद मरियम और यूसुफ गलील के नासरत को अपने घर लौट गए। वहीं बालक यीशु अपने स्वास्थ्य और उम्र में बढ़ते गए। अपनी उम्र के हिसाब से भी ज्यादा उनमें बुद्धि थी। परमेश्वर की खास कृपा उनके ऊपर थी। यीशु के माता पिता हर साल फसा के त्यौहार के समय यरूशलेम जाते थे। यीशु की 12 साल की उम्र में त्यौहार की प्रथा के अनुसार वे यरूशलेम गए हुए थे। वहां त्यौहार खत्म होने पर जब वे वापस लौट रहे थे, तब बालक यीशु वहीं रह गया था। यह बात यूसुफ और मरियम को पता नहीं थी। यह सोचकर कि लोगों के झुंड ही में अन्य यात्रियों के साथ वह होंगे, वे एक दिन की यात्रा करते हुए काफी दूर निकल गए। तब उनके अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ही में वे उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें वहां ना पा सकने पर वे उन्हें ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे। 3 दिन के बाद उन्होंने बालक यीशु को प्रार्थना भवन में शिक्षकों के साथ बैठे सवाल जवाब करते पाया। यीशु को सुनने वाले उनकी बुद्धिमानी की बातें सुनकर और सवाल पूछने की कला पर आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखते ही वे अचरज में पड़ गए और उनकी माता ने उनसे कहा,
बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं।
यीशु ने जवाब दिया,
यह क्या कि आप मेरी वजह से परेशान हो रहे थे? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आपको ये नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना है?
वे यीशु की इस बात को समझ नहीं पाए। उसके बाद वे उनके साथ नासरत आ गए और वहीं उनकी अधीनता में रहे। लेकिन मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखीं। और यीशु बुद्धि, आयु, कद काठी और परमेश्वर तथा लोगों के स्नेह में उन्नति करते गए। लुका अध्याय 3। तिबरियास कैसर के 15वें साल में पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर था और चौथाई का राजा हेरोदेस गलील का और उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रखोनितिस का और लिसानियास अबिलेने का शासक था। हन्ना और कैफा जब प्रधान पुरोहित थे, तभी जंगल में जकरिया के बेटे यहुन्ना को प्रभु का संदेश मिला। और वह यर्दन के आसपास के इलाके से मन बदलाव के बपतिस्मे और गुनाहों की माफी की खुशखबरी सुनाने लगा, जैसे कि यशाया नबी की किताब में लिखा है,
जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज ये है, प्रभु के रास्ते को तैयार करो, उसे सीधा करो, हर एक घाटी भर दी जाएंगी, प्रत्येक पहाड़ नीचा और पहाड़ी नीची की जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें सीधी की जाएंगी, उबड़ खाबड़ रास्ते चिकने बनाए जाएंगे, सभी लोग परमेश्वर पिता की मुक्ति को देखेंगे।
तब यहुन्ना ने उस भीड़ से जो उसके पास बपतिस्मा पाने आई थी कहा,
सांप के बच्चों, परमेश्वर के आने वाले दंड से दूर भागने के लिए तुम्हें किसने चेतावनी दी है? इसलिए मन बदलाव का सबूत दो और अपने आप से ये मत कहो, अब्राहम हमारे पिता है। ऐसी डींगे मारना बेकार है, परमेश्वर पिता इन पत्थरों को अब्राहम की संतान में बदल सकते हैं। पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ी पहले ही से रखी हुई है, हर एक वह पेड़ जिसमें अच्छा फल नहीं निकलता है काटने के बाद आग में झोंका जाता है।
भीड़ ने सवाल किया,
हमें करना क्या चाहिए?
यहुन्ना ने उत्तर दिया,
अगर तुम्हारे पास दो कुर्ते हैं, एक गरीब को दे दो, अगर तुम्हारे पास खाना है तो मिल बांट कर खाओ।
भ्रष्ट टैक्स जमा करने वाले भी बपतिस्मा पाने के लिए आए और पूछने लगे,
गुरु जी, हमें क्या करना चाहिए?
उसने उत्तर दिया,
ईमानदार रहो और जितना रोमी सरकार ने तय किया है उससे ज्यादा मत लो।
कुछ फौजियों ने पूछा,
हमें बताइए कि हम क्या करें?
उसने उनसे कहा,
दबाव डालकर किसी से पैसा मत ऐंठना या किसी पर झूठा आरोप मत लगाना, अपनी मजदूरी से खुश रहना।
हर एक मसीह के जल्दी आने का इंतजार कर रहा था, इसलिए लोग ये जानना चाहते थे कि कहीं यूहन्ना तो मसीह नहीं है। उनके सवालों के जवाब में यूहन्ना बोला,
मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन एक है जो मुझसे ज्यादा अधिकार रखते हैं, इतना ज्यादा कि मैं उनकी जूती का फीता भी खोलने के लायक नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। अपने सूप की मदद से वह गेहूं और भूसी को अलग करने के लिए तैयार है, उसके बाद वह दाने को साफ करके अनाज को खत्ते में रखेंगे, लेकिन भूसे को कभी न बुझने वाली आग में डालेंगे।
सुसमाचार को सुनाते समय यूहन्ना ने ऐसी तमाम चेतावनियां दी, लेकिन अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास से ब्याह करने और दूसरी बुराइयों की वजह से हेरोद अंतिपास को यूहन्ना ने डांटा। उसने सबसे बुरी बात यह की कि यूहन्ना को जेल में डाल दिया। जब लोग वहां आकर बपतिस्मा ले रहे थे, यीशु को भी बपतिस्मा दिया गया। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, आसमान खुल गया, एक फाख्ते की शक्ल में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और आसमान से एक आवाज आई,
तुम मेरे प्रिय बेटे हो, मैं तुमसे खुश हूं।
यीशु ने अपनी सेवा का काम 30 साल की उम्र में शुरू किया। यीशु यूसुफ के बेटे समझे जाते थे और यूसुफ एली का, और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तित्याह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्या का, और वह नोगा का, और वह मात का, और वह मत्तित्याह का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योदा का, और वह यहुन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुबाबल का, और वह शल्तियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अदी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मुदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह शिमोन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह यूनान का, और वह इलियाकीम का, और वे मलिया का, और वे मिन्हा का, और वे मत्ता का, और वे नातान का, और वे दाऊद का, और वे येशे का, और वे ओबेद का, और वे बोज का, और वे सलमोन का, और वे नहशोन का, और वे अमीनादाब का, और वे अरनी का, और वे हिस्रोन का, और वे फेरिस का, और वे यहूदा का, और वे याकूब का, और वे इसहाक का, और वे अब्राहम का, और वे तेरा का, और वे नहोर का, और वे सरू का, और वे रऊ का, और वे फिलिक का, और वे एबिर का, और वे शिला का, और वे केनान का, वे अर्फगेद का, और वे शेम का, वे नूह का, वे लिमी का, और वे मतुशिला का, और वह हनोक का, और वह यरीद का, और वह महललेल का, और वह केनान का, और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। लूका अध्याय 4। पवित्र आत्मा से भरे हुए यीशु यर्दन से वापस लौटे और पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। वहां पर शैतान ने 40 दिन तक उनके सामने तरह तरह के प्रलोभन रखे। उन्होंने उन दिनों में कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद उन्हें भूख लगी और शैतान ने उनसे कहा,
अगर तुम परमेश्वर पिता के बेटे हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि वे रोटी बन जाएं।
यीशु ने उत्तर में कहा,
ये लिखा है कि इंसान सिर्फ खाना खाने से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक शब्द से जिंदा रहेगा।
तब एक ही पल में यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर शैतान ने दुनिया के सभी राज्यों को उन्हें दिखाया। शैतान ने कहा,
इनका अधिकार और इनकी शान मुझे दी जा चुकी है और मैं ये किसी को भी देने का अधिकार रखता हूं। ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूं, इसलिए अगर तुम मुझे धन्यवाद करो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा।
तभी यीशु ने घुड़कते हुए उससे कहा,
यहां से निकल जा, क्योंकि ये लिखा है कि तुम सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना और उन्हीं की सेवा भी।
इसके बाद यीशु को प्रार्थना भवन की चोटी से छलांग लगाने के लिए उकसाते हुए उसने कहा,
यदि तुम परमेश्वर के बेटे हो तो यहां से कूद जाओ, क्योंकि ये लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि तुम्हें संभालें, वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठेस न लगे।
यीशु ने उत्तर दिया,
ये लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखना।
सभी तरह के प्रलोभनों के बाद वह कुछ समय के लिए यीशु से दूर हो गया। यीशु पवित्र आत्मा की ताकत में वापस गलील लौट आए और आस पड़ोस के इलाके में उनका नाम फैल गया। उनके आराधनालयों में वे सिखाते रहे तथा सभी उनकी इज्जत करते थे। नासरत, जहां यीशु पाले पोसे गए थे, वहीं अपने रिवाज के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में आकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। उनके हाथ में यशाया नबी की किताब दी गई। किताब खोलते ही उनकी निगाह वहां गई जहां लिखा था,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, टूटे मन वालों को शिफा देने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए भी कि जकड़े हुए लोगों को आजादी, अंधों को रोशनी और दबे हुओं को मुक्ति दूं।
उन्होंने किताब को बंद किया और सहायक को देकर बैठ गए। आराधनालय में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखते रह गए। यीशु ने यह भी कहा कि जो कुछ उन लोगों ने उस दिन सुना वह सब पूरा हो गया है। सभी लोगों ने उनके बारे में गवाही दी और उनके मुंह की बुद्धिमानी की बातों को सुनकर आश्चर्य से भर कर कहने लगे,
क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है?
तब यीशु उनसे बोले,
तुम जरूर ये कहावत मुझ पर लगाना चाहोगे, डॉक्टर पहले अपने आप को तो ठीक करो। कफरनहूम में घटी बातों को तो हमने सुना है, अपने वतन में भी वही करो।
यीशु ने कहा,
मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो ये है कि कोई भी नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता है। मैं तुम्हें सच्चाई की जानकारी देता हूँ, और वो ये कि एलिया के समय में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। उस समय वहां अकाल पड़ गया था। उन दिनों में वहां बहुत सी विधवाएं थी। उनमें से सिदोन शहर के सारफत गांव की एक विधवा के पास एलिया को भेजा गया। एलिशा नबी के समय इज़राइल में बहुत से कुष्ठ रोगी थे, फिर भी सीरियाई नामान को छोड़कर और कोई ठीक नहीं हुआ।
यह सुनते ही आराधनालय के सभी लोग गुस्से से भर गए। वह उठे और जिस पहाड़ी के किनारे पर शहर बसा था वहां तक उन्हें खदेड़ दिया। वहीं से वे उनको गिराना चाहते थे, लेकिन यीशु किसी तरह से बच निकले और गलील के कफरनहूम नामक गांव पहुंच गए, जहां हर सबत के दिन वह लोगों को सिखाते रहे। यीशु की शिक्षा सुनकर वहां भी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह बड़े अधिकार के साथ सिखाया करते थे। एक बार जब वे आराधनालय में थे, बुरी आत्मा वाला एक व्यक्ति जोर से चिल्ला उठा,
नासरत के यीशु, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, क्या हमें बर्बाद करने तुम यहाँ आए हो? मुझे मालूम है कि तुम हो कौन, परमेश्वर की तरफ से भेजे गए पवित्र जन।
बीच में ही उसे रोककर यीशु ने बुरी आत्मा से कहा,
चुप, इस आदमी में से निकल जा।
बिना नुकसान पहुंचाए बुरी आत्मा उस आदमी को जमीन पर पटक कर उसमें से निकल गई और भीड़ देखती रह गई। आश्चर्य से भरे हुए लोग चिल्ला उठे,
इस आदमी के शब्दों में कितना अधिकार और ताकत है, यहाँ तक कि बुरी आत्माएं उनकी आज्ञा मानकर भाग खड़ी होती हैं।
आसपास के इलाकों में यीशु के विषय ये खबर फैल गई। आराधनालय से निकलकर यीशु शिमोन के घर गए। शिमोन की सास बुखार से तप रही थी। उन्होंने विनती की कि वह उसे अच्छा कर दें। उसकी खाट के किनारे खड़े हुए यीशु ने बीमारी को चले जाने की आज्ञा दी। उसका बुखार उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी अवभगत करने लगी। उस दिन शाम होते ही लोग अपने बीमार रिश्तेदारों और मित्रों को यीशु के पास लाने लगे। एक के बाद दूसरे पर हाथ रखकर यीशु ने उन्हें शिफा दी। कुछ लोग दुष्टात्माओं से पीड़ित थे। यीशु की घुड़की सुनते ही वह
आप परमेश्वर हैं
चिल्लाकर निकल गई। यीशु ने उन्हें डांट लगाते हुए खामोश रहने को कहा। दूसरे दिन बड़े सवेरे यीशु जंगल की तरफ रवाना हुए। भीड़ उनकी तलाश करते करते उन तक पहुंच गई और उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा कि वह उन्हीं के पास रहें, लेकिन यीशु ने कहा,
ये जरूरी है कि दूसरे स्थानों में भी परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनाई जाए।
यीशु ने यहूदिया के आराधनालयों में सिखाना जारी रखा। लूका अध्याय 5। गलील की झील के किनारे एक दिन जब यीशु सिखा रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनकी बातें सुनने के लिए उमड़ पड़ी थी। झील के किनारे उन्होंने 2 नावों को खड़े देखा, लेकिन मछुआरे नाव से उतरकर अपने जालों को धो रहे थे। उसमें से एक शिमोन की थी। उस पर चढ़कर जमीन से थोड़ी दूर खेने के लिए उन्होंने उसे कहा। उसी नाव पर बैठकर यीशु भीड़ को शिक्षा देने लगे। सिखाने के बाद उन्होंने शिमोन से कहा,
गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो।
शिमोन ने कहा,
स्वामी रात भर हमने मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ ना लगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डाले देता हूँ।
ऐसा करने पर उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि उनके जाल फटने लगे। इसीलिए दूसरी नावों पर बैठे अपने साथियों की मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई। उनकी नावें मछलियों से इतनी भर गई कि वह डूबने वाली ही थी। यह सब देखकर शिमोन पत्रस यीशु के पैरों पर ये कहते हुए गिर पड़ा।
प्रभु जी, मुझसे दूर चले जाइए, क्योंकि मैं बुरा इंसान हूँ।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे और उसके साथ के लोगों को ढेर सारी मछलियां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिमोन के साथ साझेदार व्यापारी याकूब और यूहन्ना को भी, जो जब्दी के बेटे थे, बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए किनारे पर अपनी नावों को लाने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के साथ हो लिए। जब यीशु एक शहर में थे, कोर से भरा हुआ एक व्यक्ति उनके पास आया। यीशु को देखते ही अपना सिर नीचे झुकाते हुए गिड़गिड़ाकर उसने कहा,
प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं।
यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छूते हुए कहा,
मैं यही चाहता हूँ, तुम ठीक हो जाओ।
तुरंत उसका कोढ़ खत्म हो गया। तब यीशु ने उसे आज्ञा दी कि किसी को ना बताए और जाकर पुरोहित को दिखाए। साथ ही स्वस्थ हो जाने के सबूत के रूप में मूसा द्वारा ठहराई भेंट चढ़ाए। लेकिन उनके बारे में खबर कुछ ज्यादा ही फैल गई और बड़ी भीड़ उन्हें सुनने और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आने लगी। इसके बावजूद यीशु अक्सर जंगल की तरफ निकल जाते और वहां परमेश्वर से संगति किया करते थे। एक दिन जब यीशु सिखा रहे थे, यहूदी धर्म के कुछ शिक्षक और फरीसी वहां बैठे हुए थे। ये सब गलील, यहूदिया और यरूशलेम के गांव से आए हुए थे। लोगों को स्वस्थ करने के लिए यीशु के पास योग्यता तो थी ही। तभी कुछ लोग खाट पर एक लकवे के बीमार को ले आए। वे उसे यीशु के सामने लाकर रखना चाहते थे, लेकिन भीड़ की वजह से वे ऐसा ना कर सके और छत पर चढ़ गए। उन्होंने खपरेल को हटाकर खाट को नीचे लटकाते हुए यीशु के सामने रख दिया। उन लोगों के भरोसे को देखकर यीशु ने कहा,
बेटा, तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं।
धार्मिक कानून के जानकार और फरीसी मन ही मन सोचने लगे कि
ये कौन होते हैं पापों को माफ करने वाले? सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। यह तो खुलेआम परमेश्वर निंदा है।
लोगों के विरोधी विचारों को जानकर यीशु ने उनसे कहा,
तुम अपने मन ही मन एतराज क्यों जता रहे हो? क्या कहना आसान लगता है, तुम्हारे गुनाह माफ हुए या उठकर चलो? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र यीशु को इस दुनिया में गुनाहों की माफी देने का अधिकार है।
यीशु लकवा पीड़ित व्यक्ति से बोले,
मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उठो और अपना बिस्तर लेकर घर जाओ।
सभी के सामने वह उठा और अपने बिस्तर को उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता घर को चला गया। तब सभी हैरान होकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। अचरज से भरकर वह कहने लगे,
आज हमने बड़ी अजीब घटना देखी है।
इसके बाद यीशु की मुलाकात टैक्स चौकी पर बैठे लेवी नामक टैक्स इकट्ठा करने वाले से हुई, जिसे उन्होंने अपने साथ हो चलने को कहा। उसने भी अपना सब कुछ त्याग कर ऐसा किया। यीशु को उसने अपने घर पर एक शानदार दावत में बुलाया। वहां उसके साथ ही टैक्स कलेक्टरों के अलावा मेहमान भी थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने शिष्यों के खिलाफ कुड़कुड़ाते हुए कहा,
आप टैक्स इकट्ठा करने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खाते हैं?
यीशु ने जवाब में कहा,
बीमार लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, स्वस्थ लोगों को नहीं। अपने आप को धार्मिक समझने वाले लोगों को नहीं, लेकिन जो अपने आत्मिक दिवालियेपन को पहचानते हैं, उन्हें मन बदलाव के लिए नेवता देने मैं पृथ्वी पर आया हूँ।
उन लोगों ने यीशु से कहा,
यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य अक्सर उपवास करते हैं, लेकिन आपके शिष्य ऐसा नहीं करते हैं।
यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम बरातियों को उस समय उपवास करने के लिए कहोगे जब दुल्हा उनके साथ है? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे।
यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत बताया,
कोई भी इंसान एक पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। कोई भी ताजे अंगूर के रस को पुरानी मशकों में नहीं भरता है, यदि वो ऐसा करता है तो मशकें फट जाती हैं और अंगूर का रस भी बर्बाद हो जाता है। ताजा अंगूर का रस नई मशकों ही में भरा जाना चाहिए। बासी अंगूर के रस को पीने के बाद नए में किसी को मजा नहीं आता है। वो ये कहता है कि बासी ज्यादा मजेदार था।
लुका अध्याय 6। एक सबत के दिन जब यीशु मसीह अनाज के खेतों में से होकर गुजर रहे थे, उनके शिष्य गेहूं के दानों को हाथों से मसलकर खाने लगे। कुछ फरीसियों ने कहा,
जिस बात को मजहब सब्त के दिन करने से मना करता है वह क्यों कर रहे हो?
यीशु ने उत्तर दिया,
क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है कि दाऊद ने उस समय क्या किया जब उसे और उसके साथियों को बहुत भूख लगी थी? जिस रोटी को सिर्फ पुरोहित खा सकता था, प्रार्थना भवन में जाकर उसने और उसके साथियों ने कैसे खाई?
तब यीशु ने कहा कि
मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी मालिक है।
एक और सबत के दिन यीशु आराधनालय में सिखा रहे थे। वहीं पर एक सूखे हाथ वाला इंसान था। यहूदी धर्म के विद्वान और फरीसी इस ताक में थे कि यह देखें कि यीशु सबत के दिन उसे अच्छा करेंगे या नहीं। यीशु उनके मन की बात जानते थे। उन्होंने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा,
सबके सामने यहां बीच में खड़े हो जाओ।
इसलिए वह वहां आ गया। तब यीशु ने अपनी खिलाफत करने वालों से कहा,
तुम मेरे सवाल का जवाब दो। सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा? ये जीवन दान का दिन है या जीवन लेने का?
इधर उधर देखने के बाद यीशु ने उस आदमी से कहा,
अपना हाथ आगे करो।
जैसे ही उसने किया, उसी समय उसका हाथ स्वस्थ हो गया। यह देखकर यीशु के दुश्मन आग बबूला हो उठे और चर्चा करने लगे कि वे यीशु के साथ क्या करें। इसके कुछ समय बाद यीशु परमेश्वर से संगति करने पहाड़ पर गए और सारी रात उन्होंने वहीं बिताई। सुबह होते ही यीशु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और भेजे जाने के लिए 12 को अलग किया। उनके ये नाम थे, शिमोन जिसे पतरस कहा, और पतरस का भाई आंद्रियास, याकूब और यहुन्ना, और फिलिप और बर्तुलमे, और मत्ती और थोमा, और हलफाई का पुत्र याकूब, और शिमोन जो जिलेट कहलाता है, और याकूब का भाई यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जिसने दगाबाजी की। यीशु के पहाड़ से नीचे उतरने पर एक समतल जमीन पर यीशु के शिष्य, दूसरे विश्वासी और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तर में सूर और सिदोन के समुद्र तट और सारे यहूदिया और यरूशलेम से आए हुए लोग वहां थे। वे यीशु को सुनने और तमाम बीमारियों से छूटने के लिए वहां आए थे। यीशु ने वहां तमाम गंदी आत्माओं को भी निकाल दिया। हर कोई यीशु को छूना चाहता था क्योंकि उनमें से स्वस्थ करने की ताकत निकला करती थी। उन्होंने सबको अच्छा भी कर दिया। तब यीशु अपने शिष्यों की तरफ मुड़कर बोले,
तुम लोग सचमुच मजे में हो, क्योंकि कुछ और ना होते हुए भी तुम परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार हो। सुखी हो तुम लोग जिनमें अभी भूख है, क्योंकि तुम ही संतुष्ट किए जाओगे। तुम भी जो अभी तो रो रहे हो लेकिन बाद में हंसोगे। जब लोग मेरी खातिर तुमसे नफरत करें, बहिष्कार करें, बेइज्जती करें और तुम्हें बुरा ठहरा कर ठुकरा दें, तब तुम आशीषित हो। उस दिन तुम खुश होना और जश्न मनाना, क्योंकि इसके बाद स्वर्ग में तुम्हें इसके लिए अच्छा पुरस्कार मिलने वाला है। और हाँ, इन लोगों के पूर्वजों ने पुराने नबियों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया था, लेकिन तुम संपन्न लोगों के लिए भविष्य में दुख ही दुख है, क्योंकि अभी तुमने सुख पा लिया है। तुम जो तृप्त हो, तुम्हें भूख लगेगी। तुम पर अफसोस जो अभी हंसते हो, क्योंकि तुम भी रोओगे और विलाप करोगे। तुम पर हाय जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि इनके पूर्वज भी झूठे नबियों की बड़ाई किया करते थे। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और नफरत करने वालों के साथ भलाई। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं तुम उनकी भलाई के शब्द कहो। और जो बुरा बर्ताव करते हैं उनके लिए आशीष मांगो। जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरे गाल पर भी मार लेने दो। जो तुम्हारी कमीज को जबरदस्ती छीनना चाहे उसे बनियान छीनने से भी मत रोको। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुम्हारी चीज जबरन ले ले उससे वापस मत मांगो। जिस तरह के बर्ताव की आशा तुम दूसरों से करते हो वैसा बर्ताव तुम भी दूसरों के साथ करो। अगर तुम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हो जो तुमसे करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट लोग भी अपने से प्रेम करने वालों से ऐसा करते हैं। अगर तुम उन लोगों की मदद करते हो जो तुम्हारी मदद करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्योंकि दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं। अगर तुम किसी को उधार देने के बाद वापस उस धन की अपेक्षा करते हो तो ये कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट लोग भी दुष्टों को इसलिए उधार देते हैं ताकि उन्हें वापस उतना मिल ही जाए। लेकिन तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, भलाई करो, उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो धन्यवाद करने वाले और बुरे दोनों पर कृपालु हैं। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
फिर यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा।
क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता? और जब अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे पखंडी, पहले अपनी आंख से लट्ठा साफ कर, तब जो तिनका तेरी भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं लाता और खराब पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाता। हर पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले खजाने से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो उस घर पर बारिश के थपेड़े पड़े परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर बारिश के थपेड़े पड़े तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया।
लूका अध्याय 7। लोगों से ये सब बातें कहने के बाद यीशु कफरनहूम लौटे। उसी समय एक बड़े इज्जतदार रोमन अफसर का एक नौकर बीमारी की वजह से मरने पर था। यीशु के बारे में सुनने पर उसने कुछ यहूदी बुजुर्ग लोगों को भेजकर उन्हें बुलाया ताकि वे आकर उसके दास को स्वस्थ कर दें। यीशु के पास आने पर उन्होंने कहा कि
रोमन ऑफिसर इस लायक है कि उसके लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि वो यहूदियों को चाहता है और उसी ने आराधनालय को हमारे लिए बनाया है।
तब यीशु उन लोगों के साथ चल दिए। जब यीशु घर से बहुत दूर नहीं थे तभी रोमी ऑफिसर ने अपने कुछ दोस्तों के द्वारा कहलाया कि यीशु उसके घर आने का कष्ट ना करें, क्योंकि वह स्वयं इस लायक नहीं है। उसने कहा,
इसी वजह से मैं आपके पास आने से
हिचकिचा रहा था, इसलिए कि मेरे पास भी अधिकार है और सैनिक मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ तो वो आ जाता है, ये करो तो वो करता है।
यह सुनकर यीशु को उस व्यक्ति पर आश्चर्य हुआ और अपने साथ चलने वाली भीड़ की तरफ मुड़कर कहा,
सच ये है कि इसराइलियों में भी मैंने ऐसे विश्वास को नहीं पाया है।
भेजे हुए लोग घर लौटे तो उन्होंने नौकर को बिल्कुल ठीक पाया। दूसरे दिन भीड़, यीशु मसीह के तमाम शिष्य और वह नाइन नामक गांव पहुंचे। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही एक नवजवान की अर्थी को देखा गया। वह अपनी विधवा माँ का इकलौता बेटा था और उस गांव का एक बड़ा झुंड अर्थी के साथ था। उस महिला को देखते ही यीशु को तरस आया और उन्होंने कहा,
रो मत।
पास आकर यीशु ने अर्थी को छू लिया और उसे उठाने वाले तुरंत वहीं ठहर गए। वह बोले,
हे नवजवान उठकर बैठो।
वह मुर्दा नवजवान उठ बैठा और बातें करने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। हर एक के ऊपर डर सा छा गया और सभी परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे कि
हमारे बीच में एक बड़ा नबी उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर हमसे भेंट करने उतर आए हैं।
सारे यहूदिया और आसपास के सभी इलाके में यह बात फैल गई। इन बातों की सूचना यूहन्ना के शिष्यों ने यूहन्ना को दी। अपने शिष्यों में से दो को बुलाकर यूहन्ना ने यीशु के पास यह पूछवाने के लिए भेजा कि जो आने वाले थे वह आप ही हैं या हम किसी और का इंतजार करें। वह दोनों आकर यीशु से पूछने लगे,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें आपके पास ये पूछने के लिए भेजा है कि जो आने वाले थे वो आप ही हैं या हम किसी और का इंतजार करें।
तभी यीशु मसीह ने अनेकों बीमारियों, कष्टों और प्रेत आत्माओं से पीड़ित लोगों को आजाद करने के साथ अंधों को रोशनी दी। उनका उत्तर देते हुए यीशु ने कहा,
जो कुछ देख रहे हो सुन रहे हो वो सब जाकर यूहन्ना को बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चल रहे हैं और जरूरतमंद और असहाय लोगों को खुशी की खबर सुनाई जा रही है, और फायदे में वही है जो मेरी वजह से दुविधा में नहीं पड़ेगा।
जब वे संदेशवाहक वापस लौट गए तो वह लोगों से यूहन्ना के बारे में कहने लगे,
तुम लोग जंगल में क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को? लेकिन तुम देखने क्या गए थे, कीमती कपड़े पहने हुए व्यक्ति को? देखो, जो कीमती कपड़े पहनते हैं वे राजमहल में रहा करते हैं। लेकिन वहां देखने क्या गए थे, एक नबी? हाँ, एक नबी से भी बड़े व्यक्ति को। इसी के बारे में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे सामने एक खबर देने वाले को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की तैयारी करेगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो भी लोग पैदा हुए उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य में जिसको सबसे कम समझा जाता है वो यूहन्ना से भी बड़ा है।
जब सभी लोगों ने यह सब सुना तो टैक्स इकट्ठा करने वालों ने भी हामी भरते हुए कहा कि परमेश्वर का रास्ता ही सही है, क्योंकि यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा दे चुका था। लेकिन फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने परमेश्वर के रास्ते को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मे का इनकार किया। यीशु ने कहा,
मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किस तरह के लोग हैं ये मैं कैसे बताऊं? वे उन बच्चों के समान हैं जो चौराहे में खेलते हुए अपने दोस्तों से शिकायत करते हैं, हमने तुम्हारे लिए शादी में बजने वाली धुन बजाई लेकिन तुमने नाच नहीं दिखाया, इसलिए हमने वो राग अलापी जो अंत्येष्टि के समय की है तब भी तुम रोए नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाया करता था ना अंगूर का रस पीता था, लेकिन तुम उसे दुष्टात्मा वाला व्यक्ति कहते थे। दूसरी तरफ मनुष्य का पुत्र खाना खाता है और अंगूर का रस पीता है और तुम्हारी नजर में वो पेटू, प्यक्कड़, टैक्स इकट्ठा करने वालों और दुष्टों का दोस्त है। लेकिन ज्ञान को वे ही लोग परख सकते हैं जो सचमुच ज्ञानी हैं।
इनमें से एक फरीसी बार बार यीशु को अपने घर बुला रहा था, इसलिए यीशु उसके घर खाने पर गए। उसी गांव में एक बुरे चाल चलन वाली स्त्री रहा करती थी। फरीसी के घर में यीशु की दावत की खबर सुनकर वह एक इत्र की बोतल लेकर वहां आई। वह यीशु के पास पीछे खड़ी रोते रोते उनके पांव को आंसुओं से भिगोते हुए अपने बालों से पोंछने लगी। उसने उनके पांव को बार बार चूमा और इत्र मला। वह फरीसी मन ही मन सोचने लगा,
अगर यीशु एक नबी होते तो जान जाते कि उन्हें छूने वाली इस स्त्री का चाल चलन अच्छा नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
शिमोन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
शिमोन ने कहा,
गुरुजी कहिए।
एक महाजन के दो कर्जदार थे, एक के ऊपर 500 चांदी के सिक्के और दूसरे के ऊपर 50 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। जब वे कर्ज लौटा न सके तो उसने उन दोनों को माफ कर दिया। मुझे बताओ, कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा?
शिमोन ने कहा,
मैं सोचता हूँ जिसका ज्यादा माफ किया गया।
यीशु ने कहा,
तुम बिल्कुल सच कह रहे हो।
उस स्त्री की तरफ मुड़कर यीशु ने शिमोन से कहा,
क्या तुम इस स्त्री को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर में आया और तुमने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। तुमने मुझे चूमा नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ ये मेरे पैरों को चूमती जा रही है। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं उंडेला, लेकिन इस महिला ने मेरे पैरों पर खुशबूदार तेल उंडेल दिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बहुत से अपराध माफ किए जा चुके हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। लेकिन जिसका थोड़ा माफ किया गया है वो कम प्रेम करता है।
यीशु ने स्त्री से कहा,
तुम्हारे अपराध माफ हो चुके हैं।
यीशु के साथ खाना खाने वाले दूसरे लोग आपस में कहने लगे,
ये कौन है जो अपराधों को भी माफ कर सकता है?
यीशु ने स्त्री से कहा,
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है, खुशी खुशी जाओ।
लुका अध्याय 8। इसके तुरंत बाद यीशु परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनाते हुए गांव गांव गए और 12 जन उनके साथ थे। कुछ महिलाएं जो गंदी आत्माओं और कमजोरियों से आजाद की गई थीं, वह भी साथ में थी। जिस मरियम मगदलेनी में से 7 बुरी आत्माएं निकाली गई थीं और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये सभी अपनी संपत्ति से यीशु को सहयोग दिया करती थीं। जब चारों तरफ के गांव से बहुत से लोग आकर भीड़ लगाने लगे तो यीशु दृष्टांत देकर सिखाने लगे।
एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बो रहा था, कुछ रास्ते के किनारे गिरे और पैरों से कुचल दिए गए और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे और जैसे ही अंकुर निकले तो नमी के अभाव में सूख गए। कुछ कंटेली झाड़ियों में गिरने पर उन्हीं के साथ बढ़ गए और कांटों ने उन्हें दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फलवंत हो गए।
यह सब कहने के बाद यीशु ने ऊंची आवाज में कहा,
जो सुनने में दिलचस्पी रखता है वो सुन ले।
यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा,
इस दृष्टांत का मतलब क्या है?
यीशु ने कहा,
परमेश्वर के राज्य के रहस्यों की समझ तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरे लोगों को मैं दृष्टांत से सिखाता हूँ, ताकि देखते हुए वे देख ना सकें और सुनते हुए वे समझ ना सकें। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का शब्द है। रास्ते के किनारे के वे हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर उनके भीतर से शब्द को उठा ले जाता है, ताकि वे लोग सुनकर मुक्ति ना पा जाएं। चट्टान पर के वे हैं जो सुनकर खुशी से शिक्षा को अपना लेते हैं, लेकिन उनकी जड़ें गहराई में नहीं जा पाती हैं। कुछ समय के लिए वे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा के समय पीछे हट जाते हैं।
जो कंटीली झाड़ियों में गिरे उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो वचन सुनने के बाद बढ़ते हैं, लेकिन चिंताओं, इस जीवन के ऐशो आराम और दौलत की चाह में फंसने से किसी काम के नहीं रह जाते। लेकिन अच्छी जमीन में गिरने वाला बीज उनकी ओर संकेत है जो संदेश सुनने के बाद अच्छे मन से संभाल कर रखते हैं और धीरज से फल उत्पन्न करते हैं। दिए को जलाकर कोई भी व्यक्ति किसी बर्तन से ढांकता नहीं है या चारपाई के नीचे नहीं रखता, लेकिन दिए को दीपदान पर रखता है ताकि जो भीतर आते हैं उन्हें रोशनी मिल सके, क्योंकि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो हमेशा गुप्त रहेगा, कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो हमेशा छिपा रहेगा। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास से वो सब ले लिया जाएगा जो कि उसके पास है।
तब उनकी माँ और भाई उनसे मिलने आए, लेकिन भीड़ के कारण मिल ना सके। यीशु से कहा गया,
आपकी माँ जी और भाई बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं।
यीशु ने इसके जवाब में उन लोगों से कहा,
मेरी माँ और मेरे भाई वे सभी हैं जो मेरी बातें सुनकर वैसा ही करते हैं जैसा मैं कहता हूँ।
एक दिन की बात है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर थे, यीशु ने उनसे कहा,
चलो झील के उस पार चलते हैं,
और वे उस तरफ खेने लगे। जब वे चले जा रहे थे तभी यीशु की आंख लग गई। झील में तूफान उठने की वजह से नाव में पानी भरने लगा और वे सब बड़े खतरे में पड़ गए। यीशु के पास आकर उन्हें जगाते हुए वे कहने लगे,
स्वामी स्वामी अब तो हम मर जाएंगे।
यीशु जाग गए और उन्होंने हवा और उठने वाली लहरों को डांटा, तुरंत वे थम गए और शांति हो गई। यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारा विश्वास कहाँ है?
डरते और आश्चर्य करते हुए वे एक दूसरे से पूछने लगे,
यह किस तरह के इंसान हैं? क्योंकि यह हवा और पानी को आज्ञा देते हैं और वे उनकी बात मानते हैं।
उन्होंने गिरासेनियों की तरफ खेना शुरू किया जो झील के उस पार था। जब यीशु नाव से जमीन पर उतरे उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो बहुत समय से भूतों से पीड़ित था। वह कपड़े नहीं पहनता था और घर में रहने के बजाय कब्रों में रहा करता था। यीशु को देखते ही चिल्लाते हुए वह उनके सामने गिर पड़ा और ऊंची आवाज में बोला,
परमेश्वर के पुत्र यीशु, मैं दुहाई देता हूँ कि मुझे ना सताए।
यह इसलिए क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया था कि भूत उसमें से निकल जाए, क्योंकि अक्सर वह उसे जकड़ते थे, उसे जंजीरों और हथकड़ियों से बांधकर खास निगरानी में रखा जाता था। वह सांकलों को तोड़कर भूतों द्वारा जंगल में ले जाया जाता था। यीशु ने उससे पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है?
उसने कहा,
सेना,
क्योंकि उसमें बहुत से भूत समा गए थे। उन भूतों ने यीशु से विनती की कि वह उन्हें अधोलोक में जाने की आज्ञा ना दें। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। भूतों ने यीशु से दुहाई देकर कहा कि उन्हें सूअरों में जाने दिया जाए, और यीशु ने ऐसा होने दिया। तब वह भूत उस इंसान में से निकलकर सूअरों में समा गए। पूरा का पूरा वह झुंड पहाड़ी के ऊपर से नीचे झील में गिरकर डूब गया। उनकी देखरेख करने वाले ये सब देखकर भागे और जाकर गांव में ये खबर सुना दी। सुनकर लोग जब ये देखने आए तो यीशु के चरणों पर उस भूत पीड़ित व्यक्ति को कपड़े पहने और सही मानसिक हालत में देखकर डर से गए। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने इन लोगों को बता दिया कि ये भूत पीड़ित व्यक्ति किस तरह से अच्छा हो गया। तब गिरासेनियों के आसपास के सभी लोग गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि यीशु वहां से चले जाएं, क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तब यीशु नाव पर बैठकर वापस चले गए। जिस व्यक्ति में से ये भूत निकाले गए थे उसने यीशु से विनती की कि यीशु उसे अपने साथ रहने दें, लेकिन यीशु ने उसे ये कहते हुए भेज दिया,
अपने घर वापस जाओ और बताओ कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए हैं।
वह सारे शहर में लोगों को बताने लगा। यीशु के वापस लौटने पर लोगों ने बड़ी खुशी के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि वे सब उनका इंतजार ही कर रहे थे। तभी याइर नाम एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह एक आराधनालय का प्रबंधक था। यीशु के कदमों पर गिरकर वह उनसे प्रार्थना करने लगा कि वह उसके घर आएं। उसके पास 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने ही वाली थी। यीशु जब उसके घर की तरफ चलने लगे, एक बड़ी भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी। तभी एक महिला जिसने अपने खून बहने की बीमारी से आज़ाद होने के लिए अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर लुटा दिया था और फिर भी ठीक नहीं हुई थी, पीछे से आई और यीशु के वस्त्र के एक छोर को उसने चुपके से छू लिया और उसी वक्त उसका खून बहना रुक गया। यीशु ने कहा,
मुझे किसने छुआ है?
जब हर व्यक्ति इनकार करने लगा, तभी पतरस और उसके साथियों ने यीशु से कहा,
स्वामी जी, लोग भीड़ लगाए हुए हैं और आपके ऊपर गिरे पड़ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि किसने आपको छुआ?
यीशु ने उत्तर दिया,
किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे भीतर से शक्ति निकलने का एहसास मुझे हुआ है।
जब उस महिला ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब घबराती हुई आई और उनके पांव पर गिरते हुए उसने बताया कि यीशु को उसने क्यों छुआ था और तुरंत अच्छी हो गई थी। यीशु ने उससे कहा,
बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है, खुशी से जाओ।
इसी दौरान किसी ने आराधनालय के प्रबंधक के यहाँ से आकर खबर दी कि उसकी बीमार बेटी मर चुकी है और यीशु को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने यह सुनकर उत्तर दिया,
डरो मत, केवल भरोसा रखो और वो जी उठेगी।
प्रबंधक के घर आकर यीशु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ किसी और को अपने साथ अंदर नहीं आने दिया। सब लोग वहां रो पीट रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा,
मत रो, वो मरी नहीं है, सो रही है।
यीशु की बात सुनकर वे हंसने लगे, क्योंकि वह मर चुकी थी। यीशु ने लड़की के हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा,
हे लड़की, उठो।
तब लड़की की जान उसमें वापस आ गई और वह उठकर बैठ गई। यीशु ने उनके माता पिता से उसे कुछ खाने को देने के लिए कहा। लड़की के माता पिता आश्चर्य से भर गए, लेकिन यीशु ने उन्हें किसी को भी बताने से मना किया। लूका अध्याय 9। तब यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें सब भूत प्रेतों को निकालने और बीमारियों को ठीक करने की ताकत और अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर के राज्य का समाचार देने और बीमारियों से आजाद करने के लिए भेजा। यीशु ने उनसे कहा,
सफर के लिए कुछ मत लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना 2 कमीजें। और जिस घर में तुम पहले पहुंचो, वहीं रहना और वहीं से विदा होना। जो कोई तुम्हारा स्वागत ना करे, उस इलाके से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ देना, ताकि उनके खिलाफ सबूत हो।
इसलिए वह निकलकर गांव-गांव खुशी की खबर सुनाते और हर जगह लोगों को स्वस्थ करते गए। देश के चौथाई भाग का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ का कहना था कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। कुछ कह रहे थे कि ये तो एलिया है और दूसरे उसे पुराने समय का नबी समझ रहे थे। हेरोदेस बोल उठा,
यूहन्ना को तो खुद मैंने मरवाया था, फिर ये मनुष्य कौन है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं?
वह उससे मुलाकात भी करना चाहता था। प्रेरितों ने वापस लौटने पर वह सब बातें बताईं जो उन्होंने की थीं। तब वह उनको अपने साथ लेकर चुपचाप बैतसदा के विरान इलाके में चले गए। लोग ये जानकर उनसे भेंट करने आए और यीशु ने उनसे मुलाकात की। यीशु ने उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और बीमार लोगों को अच्छा कर दिया। दिन ढलने पर 12 ने आकर यीशु से कहा,
भीड़ को विदा कीजिए, ताकि आसपास के इलाकों में जाकर रहने और खाने का इंतजाम कर सकें, क्योंकि यह तो वीरान जगह है
लेकिन यीशु ने उनसे कहा,
तुम ही खाने के लिए उन्हें कुछ दो।
और वे बोले,
5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है, खाना खरीद कर लाने ही से कुछ हो सकता है।
वहाँ करीब 5,000 आदमी थे। यीशु ने उनसे कहा,
50-50 की कतार में लोगों को बैठा दो।
शिष्यों ने लोगों को इसी तरह बिठा दिया। तब यीशु ने रोटियां और मछलियां हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखते हुए धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि लोगों में बांट दें। सब लोगों के भरपूर खा लेने के बाद उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाई। जब यीशु अकेले प्रार्थना कर रहे थे और शिष्य उनके साथ थे, तब यीशु ने उनसे पूछा,
मेरे बारे में लोगों के ख्याल क्या हैं?
उन लोगों ने उत्तर दिया
कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं या एलिया, लेकिन कुछ दूसरों के हिसाब से पुराने समय के कोई एक नबी जी उठे हैं।
यीशु ने उनसे पूछा,
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?
पत्रस ने उत्तर दिया,
परमेश्वर का मसीह।
तब यीशु ने चेतावनी देकर आज्ञा दी कि
ये बात किसी को न बताएं।
उनसे यीशु ने यह भी कहा,
ये जरूरी है कि मैं बहुत दुख उठाऊं और प्राचीनों, प्रधान याजक, महापुरोहित और शास्त्रियों द्वारा तुच्छ ठहराए जाने के बाद मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं।
तब यीशु ने सब लोगों से कहा,
अगर कोई मुझे मारना चाहे तो अपनी मनमानी करना छोड़ दे, हर दिन अपना क्रूस उठाए और मेरे कहने अनुसार करे, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए जिएगा वो उसे बचा लेगा। यदि इंसान सारी दुनिया को पाले और अपनी आत्मा को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से इस दुनिया में शर्माएगा, मैं भी अपने पिता और पवित्र स्वर्गदूतों की शान के साथ आऊंगा तो उससे शर्माऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के शासन को ना देख लें तब तक मरेंगे नहीं।
इन बातों के लगभग 8 दिन बाद यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर परमेश्वर पिता से सहभागिता करने गए। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तभी उनका चेहरा बदल सा गया और उनके कपड़े सफेद होकर चमकने लगे। एकदम से मूसा और एलिया उनसे बातें करते हुए दिखे। ये लोग अजीब रोशनी से भरे हुए थे और यीशु की मौत पर बातचीत कर रहे थे। पतरस और उसके साथी नींद के झोंके में थे और जब थोड़ा सचेत हुए तो यीशु के बदले हुए महिमा में रूप को और उनके साथ 2 पुरुषों को खड़ा देखा। मूसा और एलिया के जाने के बाद पतरस ने यीशु से कहा,
हे स्वामी, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 तंबू खड़े करेंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
बिना सोचे समझे उसने ये कह दिया था। वह ये कह ही रहा था कि बादल ने आकर उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से वह डर गए। इस बादल में से आवाज आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। उस आवाज के बंद होते ही यीशु अकेले पाए गए। शिष्य खामोश खड़े रहे और बाद में भी ये बातें किसी को ना बताईं। दूसरे दिन उनके पहाड़ से उतरते ही बहुत से लोग यीशु से मिलने आए। अचानक ही भीड़ में से एक आदमी चिल्ला उठा,
गुरुजी, देखिए मेरे पास एक ही बेटा है, एक भूत उसे पकड़ता है और वो चिल्ला उठता है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की कि वे भूत को निकालें, लेकिन वे नाकामयाब रहे।
यीशु ने कहा,
हे अविश्वासियों और जिद्दी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर सहता रहूंगा? अपने बेटे को यहां लाओ।
उसके आते आते प्रेत आत्मा ने उसे मरोड़ते हुए पटक दिया, लेकिन यीशु ने प्रेत आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर के इस बड़े काम को देखकर सब लोग अचंभा करने लगे। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
इन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि मैं लोगों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा।
लेकिन वे इस बात को ना समझे और ये बात उनसे छिपी रही कि वह उसे ना जाने और वह इस विषय में यीशु से पूछने में संकोच करते रहे। उसके बाद उनके बीच इस बात पर चर्चा होने लगी कि उनमें से कौन बड़ा है। तब यीशु ने यह जानकर कि वह अपने मनों में क्या सोच रहे थे, एक बच्चे को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा,
जो कोई मेरे नाम से इस बच्चे को अपनाता है वो मुझे अपनाता है, और जो कोई मुझे अपनाता है वो मेरे भेजने वाले को अपनाता है। क्योंकि जो तुम में छोटों में से भी छोटा है वही बड़ा है।
तब यूहन्ना ने कहा,
हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को भूत प्रेत निकालते देखा था और उसे मना किया कि वो ऐसा न करे, क्योंकि वो हम सब के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है।
यीशु ने यूहन्ना को ये कहते हुए ऐसा करने से मना किया,
उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ में नहीं वो तुम्हारी तरफ है।
यीशु के आसमान पर उठाए जाने के कुछ समय पहले यीशु ने यरूशलेम जाने का इरादा किया। उन्होंने खुद जाने से पहले कुछ शिष्यों को भेजा। सामरियों के गांव जाकर उन्होंने यीशु के लिए जगह तैयार करनी चाही। क्योंकि यीशु यरूशलेम जा रहे थे, इसलिए सामरी समाज के लोगों ने अपने गांव में उन्हें इजाजत नहीं दी। यह देखकर यीशु के शिष्य याकूब और यूहन्ना ने कहा,
हे स्वामी, अगर आप हुक्म करें तो हम आसमान से आग गिराकर उन्हें राख कर डालें।
लेकिन यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा,
तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मैं लोगों को बर्बाद करने नहीं लेकिन बचाने के लिए आया हूं।
फिर वे दूसरे गांवों को चले गए। जब वे रास्ते पर ही थे, किसी ने यीशु से कहा,
जहां जहां आप जाएंगे मैं भी आपके साथ आऊंगा।
यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है।
यीशु ने दूसरे से कहा,
मेरे शिष्य बन जाओ।
उसने कहा,
हे स्वामी, मेरे पिता के देहांत के बाद मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा।
यीशु ने उससे कहा,
मरे हुओं को अपने मुर्दों की फिक्र करने दो, तुम जाकर मुक्ति की खुशखबरी सुनाओ।
किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा,
हे स्वामी, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने रिश्तेदारों से मिलकर आता हूँ।
यीशु ने जवाब में कहा,
जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है।
लुका अध्याय 10। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और लोगों को काम दिया। जिस जिस नगर और जगह वह खुद जाने वाले थे, वहां उन्हें दो दो करके अपने से पहले उन्हें भेजा। यीशु ने उनसे कहा,
पके खेत बहुत हैं, लेकिन काम करने वालों की कमी है। इसलिए खेत के मालिक से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना रास्ते में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले उस घर की शांति के लिए प्रार्थना करो। अगर वहां कोई शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी जरूर ही मिलनी चाहिए। घर घर मारे फिरते ना रहना। जिस जगह जाओ और लोग तुम्हारा स्वागत करें, जो कुछ तुम्हारे सामने रखें वही खाओ। वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। लेकिन जिस जगह तुम जाओ और वहां के लोग तुम्हें ना अपनाएं, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ रहे हैं। फिर भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए यही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन उस नगर की हालत से सदोम की हालत ज्यादा सहने लायक होगी। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो शक्ति के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन बदल लेते।
लेकिन इंसाफ के दिन तुम्हारी हालत से सूर और सैदा की हालत ज्यादा सहने लायक होगी। हे कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचे किए जाओगे? तुम तो अधोलोक तक नीचे किए जाओगे। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें ठुकराता है वो मुझे ठुकराता है, जो मुझे ठुकराता है वो मेरे भेजने वाले को ठुकराता है।
वह 70 खुशी से वापस लौटकर कहने लगे,
हे स्वामी, आपके नाम से भूत प्रेत हमारे गुलाम हैं।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने और दुश्मन की सारी ताकत को तोड़ने का अधिकार दिया है। तुम्हें किसी चीज से नुकसान नहीं होगा। फिर भी इससे खुश ना हो कि भूत प्रेत के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण है, लेकिन इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं।
उसी क्षण यीशु पवित्र आत्मा में होकर खुशी से भर गए और कहा,
हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि आपको यही अच्छा लगा। पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है, केवल पिता। बेटे को छोड़ किसी को नहीं मालूम कि पिता कौन है, और केवल उस जन पर जिस पर बेटा उन्हें प्रकट करना चाहे।
यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों से अकेले में कहा,
वे आंखें आशीषित हैं जो वे सब देख रहे हैं जो तुम देख रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम देख रहे हो और तुम सुन रहे हो, वो सब बहुत से राजा और नबी देखना मांगते थे, लेकिन ना सुन सके और ना देख सके।
तुरंत एक शास्त्री ने यीशु को परखते हुए कहा,
हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
यीशु ने कहा,
नियम शास्त्र में क्या लिखा है? तुम पढ़ते कैसे हो?
शास्त्री ने जवाब में कहा,
तुम अपने दिल, जान और ताकत से प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखो, और जितना खुद से रखते हो दूसरे लोगों से भी और अपने पड़ोसी से भी।
यीशु पलटकर बोले,
तुमने सही जवाब दिया है, जाओ ऐसा करते हुए जीवन बिताओ तो हमेशा जियोगे।
लेकिन उसने अपने आप को धर्मी दिखाने की इच्छा से यीशु से पूछा,
पड़ोसी का क्या मतलब है?
यीशु ने उत्तर दिया,
एक पुरुष यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतारे, मारा, पीटा और घायल छोड़ दिया। उसी रास्ते से एक याजक गुजरा, लेकिन उसने अनदेखी कर दी। एक लेवी भी वहां से गुजरा, लेकिन उसका भी वही रवैया था। एक सामरी समाज का व्यक्ति भी वहां से होकर जा रहा था, लेकिन वो तरस से भर गया। उसने उसके घाव की मलहम पट्टी की और अपने गधे पर बैठाकर धर्मशाला में लाकर उसकी सेवा की। अगले दिन वहां से जाते समय उसने धर्मशाला वाले को 2 दिनार देकर उसकी सेवा करने को कहा, ये भी कि बाकी पैसा वो लौटने पर चुका देगा। तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति जख्मी व्यक्ति का पड़ोसी साबित हुआ?
वह बोला,
वही जिसने उसकी मदद की।
यीशु ने उससे कहा,
जाओ तुम भी ऐसा करो।
जाते समय रास्ते में एक गांव मिला जहां मार्था नामक एक महिला ने यीशु को अपने घर में ठहराया। तब ही मार्था की बहन मरियम यीशु की बातें सुनने में लीन हो गई। मार्था आओ भगत करते करते थक गई और यीशु से कहने लगी,
मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही है, उससे कहिए कि वो मेरी मदद करे।
लेकिन यीशु ने उत्तर दिया,
मार्था, हे मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए फिक्र करती रहती हो, लेकिन कुछ बातें हैं, सच पूछो तो एक ही बात बहुत जरूरी है। मरियम ने उस सबसे बड़े हिस्से को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा।
लुका अध्याय 11। किसी जगह पर यीशु के प्रार्थना करने के बाद शिष्यों में से एक ने उनसे कहा,
हे स्वामी, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखलाया था, वैसे ही हमें भी सिखा दीजिए।
यीशु ने उनसे कहा,
जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिताजी, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, हमारा रोज का खाना हमें रोज दिया जाए, हमारे अपराधों को माफ करें, क्योंकि हम भी उन सभी को माफ करते हैं जो हमें चोट और नुकसान पहुंचाते हैं, हमें प्रलोभन में फंसने ना दें।
तब यीशु ने उनसे कहा,
तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे दोस्त, मुझे 3 रोटियां चाहिए, क्योंकि एक मुसाफिर दोस्त मेरे पास आया है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो अंदर ही से कहे, मुझे परेशान मत करो, दरवाजा बंद है और मेरे बच्चे मेरे पास बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि हालांकि दोस्त होने के नाते वो ना भी उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके गिड़गिड़ाने की वजह से वो उतनी जरूर देगा जितनी जरूरत होगी। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, चाहत रखो तो पा जाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पा लेता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? इसलिए जब तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारे आसमानी पिता उनको जो मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे?
फिर यीशु एक गुंगी आत्मा को निकालने लगे। जब वह आत्मा निकल गई तो व्यक्ति बोलने लगा, जिससे भीड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीड़ में से कुछ लोग कह उठे,
यीशु अशुद्ध आत्माओं को बालजबुल की मदद से निकालते हैं।
दूसरे कुछ लोगों ने उन्हें परखने के लिए आसमान से एक निशान मांगा। उनके मनों और विचारों को जानकर यीशु ने कहा,
जिस राज्य में एकता ना हो वो उजड़ जाता है, और जिस घर में एकता ना हो वो नाश हो जाता है। अगर शैतान ही खुद अपनी खिलाफत करने लगे तो उसका राज्य कैसे बना रह सकता है? क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा ये इल्जाम है कि मैं बालजबूल की मदद से अशुद्ध आत्माओं को निकालता हूँ। यदि मैं बालजबूल की मदद से अशुद्ध आत्माएं निकालता हूँ तो तुम्हारे लोग किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वे ही अपना मत दें। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की मदद से भूत प्रेत निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब एक ताकतवर इंसान पूरी तरह हथियार लेकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन दौलत सुरक्षित रहती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई इंसान उस पर हमला बोलकर उसे हराता है तो वो उसके सभी हथियारों को, जिन पर उसे भरोसा था, छीनता है और धन दौलत को लूटकर बांट देता है। वो जो मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ में है, और वो जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी इंसान में से निकलती है तो आराम की जगह खोजते हुए बिना पानी की जगहों से होकर निकलती है। जब उसे कोई जगह नहीं मिलती तो कहती है, मैं अपने जिस घर से निकली थी उसी में लौट जाऊंगी। जब वो वहां पहुंचती है तो उस जगह को साफ सुथरा सजा सजाया पाती है। तब वो अपने से अधिक बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ लाकर उसमें समा जाती है, और उस इंसान की हालत पिछली हालत से और ज्यादा बुरी हो जाती है।
जब यीशु ये बातें कह ही रहे थे तो भीड़ में से किसी महिला ने ऊंची आवाज से यीशु से कहा,
आशीषित है वह गर्भ जिसमें आप रहे और वे छातियां जिनसे आपका पोषण हुआ।
लेकिन यीशु ने कहा,
सच पूछो तो धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर का संदेश सुनते और उसको मानते हैं।
जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी यीशु ने कहना जारी रखा,
ये दुष्ट पीढ़ी है क्योंकि ये कुछ निशान चाहती है, लेकिन योना के निशान के अलावा उन्हें और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से योना नीनवे के लोगों के लिए निशान बना, उसी तरह से मैं भी इस पीढ़ी के लोगों के लिए बनूंगा। दक्षिण की रानी
न्याय के दिन इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होकर उन पर दोष लगाएगी, क्योंकि वो दुनिया के छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने को आई थी, लेकिन देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होकर इन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रवचन को सुनकर मन बदला, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बढ़कर है। कोई भी व्यक्ति दीपक जलाकर ना ही तहखाने और ना टोकरी के नीचे रखता है, लेकिन उसे दीपदान पर रखता है कि अंदर आने वाले को रोशनी मिले। तुम्हारी देह का दीपक तुम्हारी आंख है। जब तुम्हारी आंख निर्मल है तो सारी देह भी रोशनी से जगमगा उठेगी, लेकिन जब वो बुरी है तो तुम्हारी देह पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएगी। इसलिए सावधान रहना कि तुम्हारी रोशनी अंधेरे में ना बदल जाए। इसलिए यदि तुम्हारी सारी देह जगमगाती हो और किसी भी हिस्से में अंधेरा ना हो, तो वो पूरी तरह ऐसा रोशन होगा जिस तरह दीपक अपनी चमक से तुम्हें रोशनी देता है।
जब यीशु ने बोलना खत्म किया तो एक फरीसी ने उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए नेवता दिया। वे भीतर जाकर खाना खाने बैठ भी गए। फरीसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यीशु रीति रिवाज के मुताबिक खाना खाने से पहले नहाए नहीं, लेकिन यीशु ने उससे कहा,
हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली को बाहर से मांजते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अंधियारा और दुष्टता है। हे बेवकूफो, जिसने बाहर के हिस्से को बनाया, क्या उसने भीतर के हिस्से को भी नहीं बनाया? लेकिन जो भीतर का है उसे दान में दे दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हे फरीसियो, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का तथा अलग अलग तरह की साग सब्जियों का दसवां हिस्सा तो दे देते हो, लेकिन इंसाफ और परमेश्वर के प्रेम को अनदेखा करते हो। यही वे बातें हैं जिन्हें तुम्हें दूसरी बातों को छोड़े बिना करनी चाहिए थी। हे फरीसियो, तुम पर हाय, क्योंकि तुम आराधनालयों में आगे की जगह और बाजारों में नमस्कार की आस लगाए रहते हो। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों की तरह हो जिन पर लोग बिना जाने बूझे चलते फिरते हैं।
तब यहूदी धर्म के एक ज्ञाता ने उत्तर दिया,
हे गुरुजी, ऐसा कहकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं।
लेकिन यीशु ने कहा,
तुम ज्ञानियों पर भी हाय, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे बोझ से दबाते हो जिन्हें उठाना मुश्किल है, लेकिन तुम खुद उन बोझों को एक उंगली से भी छूना नहीं चाहते। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन नबियों की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही पुरखों ने मार डाला था। इसलिए तुम ही गवाह हो और अपने पुरखों के कामों में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला था और तुमने उनकी कब्रें बनाई। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगी, उनमें से कुछ को वे मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, जिससे कि सृष्टि की शुरुआत से जितने नबियों का खून बहाया गया है उसका हिसाब इस पीढ़ी के लोगों से लिया जाएगा, अर्थात हाबिल के खून से लेकर जकरिया के खून तक का हिसाब, जिसकी हत्या परमेश्वर के भवन और वेदी के बीच में की गई थी। हाँ, मेरा कहना है कि इस पीढ़ी के लोगों से हिसाब मांगा जाएगा। हे शास्त्रियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुमने ज्ञान की चाबी छीन ली है। तुम तो खुद दाखिल नहीं हुए और जो दाखिल हो रहे थे उन्हें भी रोका।
जब वे वहां से चले गए तो शास्त्री और फरीसी सख्त खिलाफत करते हुए बहुत से विषयों पर यीशु से बारीकी से सवाल करने लगे और यीशु के विरोध में योजना बनाने लगे, ताकि उनके मुंह की किसी बात से उन्हें फंसाएं। लूका अध्याय 12। चूंकि ऐसी हालात में जब हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, यीशु अपने शिष्यों से कहने लगे,
फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना। ऐसा कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है
वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने अंदर के कमरे में फुसफुसाया वो छत पर से कहा जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उनसे मत डरना जो देह को बर्बाद करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उससे डरना चाहिए जो नष्ट करने के बाद नरक में भी डाल सकते हैं। क्या गौरैया मामूली चिड़िया नहीं है? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलते। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो लोगों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। लेकिन जो मेरे खिलाफ कोई बात कहे, उसका वो गुनाह माफ किया जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा की बेइज्जती करे, उसका गुनाह माफ ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं, गवर्नरों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम जवाब कैसे देंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद उसी क्षण तुम्हें सिखा देगा कि क्या बोलना चाहिए।
फिर भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा,
हे गुरुजी, मेरे भाई से कहिए कि पिता की जायदाद मेरे साथ बांट ले।
यीशु ने उससे कहा,
हे मनुष्य, मुझे किसने तुम्हारा इंसाफ करने वाला या बंटवारा करने वाला ठहराया है?
यीशु ने उनसे कहा,
सावधान रहो और हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ज्यादा दौलत होने पर भी किसी की जिंदगी पूरी तरह से उसकी दौलत पर टिकी हुई नहीं रहती है।
तब यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा,
किसी रईस की जमीन में बड़ी फसल हुई। तब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज रखूं। उसने कहा, हां, मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और वहीं अपना सारा अनाज और सारी दौलत रखूंगा। फिर मैं अपने आप से कहूंगा, ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत दौलत रखी है, चैन से खा पी और सुखी रह। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हे बेवकूफ, इसी रात तुम मर जाओगे, तब जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो व्यक्ति भी है जो अपने लिए दौलत बटोरता है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में दौलतमंद नहीं है।
फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र करके मत कहना कि हम क्या खाएंगे, ना अपनी देह की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि खाने से ज्यादा बड़ी जान और कपड़ों से बढ़कर देह है। कौवों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और खत्ते होते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालते हैं। तुम्हारी कीमत चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करने से अपनी उम्र में एक सेकंड भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो दूसरी बातों के लिए फिक्र क्यों करते हो? सोसनों के पौधों पर नजर डालो कि वे बढ़ते कैसे हैं। वे ना मेहनत करते ना काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक की तरह कपड़े पहने हुए ना था। इसलिए अगर परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाते हैं, तो हे शक करने वाले लोगों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएंगे? और तुम इस बात की ताक में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक करो, क्योंकि दुनिया के तमाम लोग इन सब चीजों की खोज में हैं, और तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। लेकिन उनके राज्य के लिए ललायत रहो, तो वे चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये अच्छा लगता है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी दौलत बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होंगे, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो कम नहीं होता, और जिसके पास चोर फटकता नहीं और कीड़ा खराब नहीं करता। क्योंकि जहां तुम्हारी दौलत है, वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारी कमर कसी रहे और रोशनी चमकती रहे, और तुम उन लोगों की तरह बनो जो अपने मालिक का इंतजार कर रहे हो कि वो ब्याह की दावत से कब लौटेगा, कि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। वे नौकर ही अच्छे हैं जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने के लिए बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे नौकर अच्छे हैं। लेकिन तुम ये जान रखो कि यदि घर का मालिक जानता कि चोर किस समय आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस क्षण तुम सोचते भी नहीं उसी क्षण मैं आ जाऊंगा।
तब पतरस ने कहा,
हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत हमारे लिए है या सभी के लिए?
यीशु ने कहा,
वो ईमानदार और बुद्धिमान कौन है जिसका मालिक उसके नौकर चाकरों पर उसे प्रधान ठहराए कि उन्हें समय पर खाना पानी दे। अच्छा है वो प्रबंधक जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपनी सब दौलत पर अधिकारी ठहराएगा। लेकिन अगर वो प्रबंधक सोचने लगे कि मेरा मालिक आने में देर कर रहा है और नौकर नौकरानियों को मारने पीटने लगे और ऐश करने लगे, तो उस प्रबंधक का मालिक ऐसे दिन जब वो उसका इंतजार ना करता हो और ऐसे समय जिसे वो ना जानता हो आएगा और उसे भारी सजा देकर उसका हिस्सा अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो नौकर जो अपने मालिक की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के मुताबिक जी रहा था, बहुत मार खाएगा। लेकिन जो नहीं जानकर मार खाने के लायक काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत आशा की जाएगी, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। मैं इस दुनिया में आग उंडेलने आया हूं, और क्या चाहता हूं, सिर्फ ये कि आग अभी सुलग जाती। मुझे तो मौत में डुबोया जाना है, और जब तक ऐसा ना हो तब तक मेरे अंदर उलझन बनी रहेगी। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे इस दुनिया में आने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं, लेकिन मेरी वजह से लोगों में आपस में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि अब से एक घर के 5 लोगों में दलबंदी हो जाएगी। 2 जन 3 के खिलाफ हो जाएंगे और 3 जन 2 के खिलाफ। बाप बेटे की, बेटा बाप की खिलाफत करेगा, माँ बेटी की और बेटी माँ की, सास बहू की और बहू सास की खिलाफत करेगी।
यीशु ने भीड़ से कहा,
जब तुम पश्चिम की तरफ बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि बारिश होगी, और ऐसा होता भी है। जब तुम दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो कहते हो बड़ी गर्मी पड़ने वाली है, और ऐसा होता है। हे ढोंगियों, तुम जमीन और आसमान को देखकर अपनी राय देते हो, लेकिन इन समयों को देखकर अपना मत क्यों नहीं दे पाते हो, और तुम खुद ही फैसला क्यों नहीं करते कि सही क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ जज के सामने खड़े होने पर हो तो पहले ही समझौता करने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें जज के द्वारा सजा सुनाई जाए और जज तुम्हें सिपाही के हाथ सौंप दे और सिपाही तुम्हें जेल में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम पैसा पैसा ना चुका दो, वहां से छूट ना सकोगे।
इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगे,
फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना।
लूका अध्याय 13। उसी वक्त जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ ने उन गलील वासियों के बारे में बताया जिनका खून पिलातुस ने उनकी लाई गई कुर्बानी के साथ मिलाया था। जवाब में यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम्हारे विचार से ये हताहत हुए गलीली दूसरे गलीली निवासियों से ज्यादा बुरे थे, इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम भी मन बदलने के अच्छे मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, और क्या तुम ये सोच रहे हो कि जिन 18 लोगों की जान शिलोह के गुंबद गिरने से हुई वे यरूशलेम में रहने वाले दूसरे लोगों से ज्यादा दुष्ट थे? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम भी मन बदलने के अवसर का लाभ नहीं उठाओगे तो अचानक मौत के शिकार हो जाओगे।
फिर यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत बताया।
एक आदमी अपने बगीचे में लगाए गए अंजीर के पेड़ से अंजीर तोड़ने आया, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं था। इसलिए उसने माली से कहा, देखो भाई, मैं आज 3 साल बाद अंजीर के लिए आया हूँ, लेकिन इसमें एक भी अंजीर नहीं लगी है। इस पेड़ को काट फेंको, ये बेकार ही में इतनी जमीन क्यों घेरे रहे? लेकिन माली गिड़गिड़ाकर बोला, श्रीमान जी, इसे 1 साल की मोहलत और दे दीजिए, मैं इसके चारों तरफ खोदकर खाद डालूंगा। यदि अगले साल तक इसमें अंजीर लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे कटवा डालना।
एक सबत के दिन यीशु एक आराधनालय में सिखा रहे थे। वहां 18 साल से कमजोरी की आत्मा से पीड़ित एक झुकी हुई महिला थी जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। उसे देखते ही यीशु ने पास बुलाकर कहा,
हे महिला, तू अपनी कमजोरी से आजाद हो चुकी हो।
जैसे ही यीशु ने अपने हाथ उस पर रखे, वह सीधी खड़ी होकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। सबत के दिन यीशु द्वारा उस महिला के ठीक हो जाने से नाराज उस आराधनालय के प्रबंधक ने वहां खड़े लोगों से कहा,
सबत के दिन प्रार्थना करवाने मत आओ, बाकी 6 दिनों में आते जाओ।
लेकिन यीशु बोले,
कपटी लोगो, तुम में से हर एक सबत के दिन काम करता है, क्या तुम इस दिन में अपने बैल या गधे को खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते हो? ये प्यारी महिला जो अब्राहम के वंश की है, शैतान की 18 साल की गुलामी से आजाद की गई है, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वो सबत के दिन ठीक हो सकी है?
यह सुनकर यीशु की खिलाफत करने वाले शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे लोग इन बढ़िया बातों की वजह से बहुत खुश हुए। तब यीशु ने पूछा,
परमेश्वर का राज्य किस तरह का है, मैं कौन सा उदाहरण देकर समझाऊं? ये सरसों के छोटे बीज की तरह है जिसे एक माली ने अपने बगीचे में बोया और वो बढ़कर बड़ा पेड़ हो गया। फिर चिड़ियों ने आकर इसकी डालियों पर घोंसला बनाया।
फिर यीशु ने कहा,
मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वो तो खमीर की तरह है जिसको किसी महिला ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा का सारा आटा खमीरी हो गया।
यीशु नगर नगर और गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की तरफ चले जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा,
क्या मुक्ति पाने वालों की संख्या कम है?
यीशु ने जवाब में कहा,
सकरे रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से दाखिल होना चाहेंगे और ना हो पाएंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम खड़े हुए दरवाजा खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दें, मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कहां के हो, तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके साथ खाया पिया और आपने हमारी सड़कों पर हमें सिखाया था। तब यीशु उत्तर देंगे, मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि तुम कहां से आए हो। तुम सब बुरा करने वालों, मेरे सामने से दूर हटो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि तुम अब्राहम, इसहाक, याकूब और दूसरे सभी नबियों को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, लेकिन तुम बाहर फेंक दिए जाओगे। लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आकर परमेश्वर के राज्य में अपनी जगह पाएंगे। अभी जो लोग आखिरी हैं वे आगे हो जाएंगे और जो अभी पहले हैं पीछे हो जाएंगे।
उसी वक्त कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा,
यहां से निकलकर चले जाइए, क्योंकि हेरोदेस आपको मार डालना चाहता है।
यीशु ने उन लोगों से कहा,
उस लोमड़ी से जाकर ये कह दो कि आज और कल मैं भूतों को निकालूंगा, बीमार लोगों को ठीक करूंगा और तीसरे दिन अपने काम को पूरा करूंगा, फिर भी मुझे आज, कल और परसों चलते जाना है, क्योंकि ये संभव नहीं कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम जो तुम्हारे पास भेजे गए नबियों पर पथराव करती हो, मैंने कितनी ही बार ये चाहा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करूं, लेकिन तुमने ये नहीं चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम नहीं कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर से ना देखोगे।
लूका अध्याय 14। एक सबत के दिन जब यीशु फरीसी के घर खाना खाने गए हुए थे, सभी की आंखें उन पर लगी हुई थीं। यीशु के सामने ही एक जलंधर से पीड़ित व्यक्ति था। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से पूछा,
क्या विश्राम दिन में किसी को स्वस्थ करना जायज है?
लेकिन वे सभी खामोश रहे, और यीशु ने उसे ठीक करके भेज दिया। यीशु ने उनसे पूछा,
तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा, गधा या बैल विश्राम दिन में कुएं में गिर जाए और वो उसे ना निकाले?
वह इसका उत्तर ना दे सके। नेवते में बुलाए हुए लोगों को अपने लिए अच्छी जगह ढूंढते हुए देखकर यीशु ने कहा,
जब तुम्हें किसी विवाह की दावत में बुलाया जाए, तब तुम सामने की कुर्सी पर मत बैठना। यदि तुमसे ज्यादा सामान्य व्यक्ति को भी वहां बुलाया गया है, तब तुम क्या करोगे? घर का मालिक आकर कहेगा, इस व्यक्ति के लिए जगह खाली करो, तब तुम्हें अपमानित होकर छोटी जगह पर बैठना होगा। इसके विपरीत, जब तुम्हें नेवता मिले तो मामूली जगह पर बैठ जाओ, ताकि तुम्हारा न्योता देने वाला तुम्हारे पास आते ही तुम्हें एक सम्मानीय जगह पर बैठने के लिए कहे। इससे सभी मेहमानों के सामने तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसलिए कि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा, दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करेगा, अधिक सम्मान पाएगा।
तब यीशु ने उससे जिसके यहां बुलाए गए थे कहा,
जब तुम किसी को अपने यहां खाने या दावत पर बुलाओ, तो अपने दोस्तों, भाइयों या रिश्तेदारों या अमीर पड़ोसियों को मत बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें नेवता दें और बराबरी हो जाए। लेकिन जब तुम दावत करो, तो गरीब, अपंग, लंगड़े लूले को नेवता देना। वापस उनके तुम्हें नेवता ना दे सकने के कारण तुम आशीषित ठहरोगे, और धर्मी ठहराए लोगों के जी उठने के समय में तुम्हें बदला मिलेगा।
इन बातों को सुनते ही वहां बैठे एक मेहमान ने कहा,
परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना क्या ही बड़ी बात है, आशीषित है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए।
तभी यीशु ने इस तरह उत्तर दिया,
एक आदमी ने एक बड़ी दावत की और बहुत से लोगों को नेवता दिया। जब सारी तैयारी हो चुकी, तो उसने अपने नौकरों को मेहमानों के यहां बुलवाने के लिए भेज दिया, लेकिन वे सभी बहाना बनाने लगे। एक ने कहा कि उसे माफ किया जाए, क्योंकि उसने एक खेत मोल लिया है और उसकी जांच पड़ताल के लिए जा रहा है। दूसरे ने कहा कि उसने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और उनको परखने के लिए जाना है। तीसरा व्यक्ति इसलिए नहीं आ सका, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। नौकर ने वापस लौटकर सब कुछ बता दिया जो लोगों ने उससे कहा था। इसके बावजूद वहां फिर भी जगह थी। इसलिए मालिक ने गुस्से में कहा, आसपास की बस्तियों और सड़कों पर जाओ, भिखारियों, लंगड़ों लूलों और अंधों को बुला लाओ। जो कुछ शुरू में बुलाए गए लोगों के लिए तैयार किया गया था, उसमें से वे कुछ भी चखने ना पाएंगे।
एक बड़ी भीड़ वहां आ चुकी थी, और यीशु ने मुड़कर उनसे कहा,
जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों या भाइयों, यहां तक कि अपने जीवन से ज्यादा मुझसे लगाव रखे, नहीं तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरी सुनकर जीना नहीं चाहता, वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए जब तक कीमत ना आंक लो, शुरुआत मत करो। वो कौन है जो बिना ये देखे कि उसके पास सारे बिल चुकता करने के लिए काफी पैसा है या नहीं, किसी इमारत को बांधने का काम शुरू करेगा, नहीं तो नींव रखते रखते उसका पैसा खत्म हो जाएगा और सभी उसकी हंसी उड़ाएंगे। ठट्ठा करते हुए लोग कहेंगे, देखो इस आदमी को, उसने घर बनवाना तो शुरू किया लेकिन पूरा बनने से पहले ही उसका पैसा खत्म हो गया। या वो कौन सा ऐसा राजा होगा जो बिना अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा किए अपनी 10,000 सैनिकों की सेना से 20,000 सैनिकों वाली सेना का मुकाबला करने की स्वप्न में भी हिम्मत करेगा। अगर वो मुकाबला ना कर सकने की हालत में होगा तो जब दुश्मन की सेना बहुत दूर ही होगी वो दोस्ती का प्रस्ताव रखेगा। इसी तरह तुम लोगों में से हर एक जन जो कुछ तुम्हारा अपना है, जब तक उससे अपना लगाव ना छोड़ दे, मेरा शिष्य नहीं बन सकता। नमक अच्छा है, लेकिन अगर उसका नमकीनपन चला जाए तो उसे फिर से खाने लायक कैसे बनाया जा सकता है? बेस्वाद नमक ना तो जमीन में डालने लायक रहेगा, ना खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसे फेंक दिया जाएगा। हर व्यक्ति जो सुन रहा है ध्यान से सुने और समझ ले।
लूका अध्याय 15। टैक्स कलेक्टर और दूसरे बड़े अपराधी अक्सर यीशु मसीह की सुनने आया करते थे। इस वजह से फरीसी और धार्मिक कानून के जानकारों ने शिकायत की कि यीशु गुनहगारों के साथ उठते बैठते और खाते पीते हैं। इसलिए यीशु ने उन्हें एक उदाहरण दिया।
यदि एक आदमी के पास 100 भेड़े हैं और उनमें से एक खो जाती है तो वो क्या करेगा? क्या वो 99 को जंगल में छोड़कर उस एक को तब तक खोजता नहीं रहेगा जब तक वो मिल ना जाए? जब वो उसे पा लेता है तो कंधे पर उठाए खुशी से घर लौटता है। घर पहुंचने पर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एक साथ बुलाकर कहता है, मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ वापस पा ली है। इसी तरह से जब एक पापी मन बदलाव के साथ परमेश्वर के पास लौटता है तब स्वर्ग में एक ऐसा बड़ा जश्न मनाया जाता है जैसा कि उन बाकी 99 के लिए नहीं मनाया जाता जिन्हें मन बदलाव की जरूरत नहीं है। वो कौन सी महिला होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उनमें से एक खो जाने पर वो दिया जलाकर घर में झाड़ू लगाकर तब तक अच्छी तरह से ना ढूंढे जब तक वो सिक्का पा ना ले। खोया हुआ सिक्का पा लेने के बाद अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है कि मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। इसी तरह मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उस समय जश्न मनाया जाता है जब एक दुष्ट व्यक्ति मन बदलता है।
यीशु ने कहा,
एक आदमी के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने आकर पिता से कहा, पिताजी जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद ये लड़का अपना सब कुछ लेकर एक दूर देश के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। सब कुछ यों बर्बाद कर डालने के बाद ही वहां बड़ा अकाल पड़ा और तब उसे काफी आर्थिक तंगी हुई। इसलिए वहां के एक निवासी के यहां जाकर वो नौकरी करने लगा जिसने उसे अपने सूरों को चराने के लिए अपने खेत में भेज दिया। वो इतना भूखा रहने लगा कि सूरों के भोजन को भी खाने के लिए तैयार था क्योंकि कोई भी उसे कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। अपने आपे में आने पर उसने खुद से कहा, मेरे पिता के घर में तमाम नौकरों के खाने पर भी भोजन बचा रहता है लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के यहाँ जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और परमेश्वर पिता के खिलाफ बुरा किया है, मैं इस लायक नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं, मुझे अपने यहाँ एक नौकर की तरह रख लें। और वो उठकर अपने पिता के घर चल पड़ा और वो दूर ही था कि उसके पिता का दिल भर आया और दौड़कर उसने उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्गिक पिता के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका बेटा कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और अपनी भेड़शाला से बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएंगे और जश्न मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा मर चुका था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे जश्न मनाने लगे। परंतु उसका बड़ा बेटा खेत में था, और जब वो घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। तब उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तुम्हारा भाई आया है और तुम्हारे पिताजी ने बछड़ा कटवाया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसने भीतर आने से मना कर दिया। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं और कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आपने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता। परंतु आपका ये आवारा बेटा, जिसने आपकी सारी जायदाद वेश्याओं पर उड़ा दी है, आया तो उसके लिए आपने पला हुआ बछड़ा कटवाया। पिता ने उससे कहा, बेटे, तुम तो हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है, परंतु अब खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है।
लूका अध्याय 16। यीशु ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाई।
एक बार की बात है, एक अमीर आदमी ने एक मैनेजर रखा हुआ था। एक बार ये सुनने में आया कि वो अपने मालिक की दौलत बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसने मैनेजर को बुलाकर पूछा, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? अपना बही खाता ठीक करो और अपना हिसाब दो। तब मैनेजर सोचने लगा, मैं करूं तो क्या करूं? मेरा मालिक मुझसे मेरा काम छीन रहा है, वो मुझे नौकरी से हटा रहा है, गड्ढा खोदने का काम तो मुझसे होगा नहीं और भीख मैं मांग नहीं सकता। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, ताकि जब मुझे काम से हटाया जाए तो लोग मुझे अपने घर में स्वीकार करें। इसलिए उसने अपने मालिक के हर एक कर्जदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? उसने जवाब दिया, 800 गैलन तेल। मैनेजर ने कहा, आधा यानी के 400 लिख लो। दूसरे से उसने पूछा, तुम्हारा कितना है? उसने उत्तर में कहा, 1000 बोरा गेहूं। मैनेजर ने कहा, 800 बोरा लिख लो। उस अमीर व्यवसायी ने अपने मैनेजर की धूर्तता की बड़ी तारीफ की, और ये सच बात भी है कि रोशनी की संतान से ज्यादा शैतान की संतान दुनियावी बातों में बहुत होशियार है। ये सीखो, अपने संसारिक साधनों का इस्तेमाल दूसरों के फायदे के लिए और दोस्त बनाने के लिए करो, ताकि जब जब तुम्हारी दुनियावी दौलत खत्म हो जाए, वे लोग स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत करें। अगर तुम छोटी बातों में ईमानदार हो तो बड़ी बातों में भी रहोगे, लेकिन अगर तुम छोटी बातों में बेईमान हो, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियां कौन देगा? अगर तुम धन दौलत के मामले में भरोसेमंद नहीं हो, जो प्राय गलत तरीके से कमाया जाता है, तो सच्ची दौलत के लिए तुम पर कौन भरोसा करेगा? और यदि तुम दूसरों की चीजों में भरोसेमंद नहीं हो, तो जो तुम्हारा हो सकता है कोई तुम्हें क्यों देगा? कोई नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक को कम चाहेगा दूसरे को ज्यादा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर और दौलत दोनों ही की सेवा नहीं कर सकते।
फरीसियों ने जब ये बातें सुनी, जिनका धन दौलत से बहुत ज्यादा लगाव था, तो यीशु की हंसी उड़ाने लगे। तब यीशु ने उनसे कहा,
तुम लोगों के सामने बहुत धार्मिक बनने की कोशिश करते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानते हैं। जिसे ये दुनिया इज्जत देती है, वो परमेश्वर की निगाह में घिनौना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक मूसा का नियम शास्त्र और भविष्यद्वक्ता तुम्हारे मार्गदर्शक थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य की अच्छी खबर दी जा रही है और हर व्यक्ति उसमें दाखिल होना चाह रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें नियम शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है। आकाश और पृथ्वी तो लापता हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की कहीं बातें तो पूरी होकर ही रहेंगी। उदाहरण के लिए, एक आदमी जो तलाक देकर किसी दूसरी से विवाह कर लेता है, व्यभिचार करता है, और जो आदमी तलाकशुदा महिला से विवाह करता है वो भी।
यीशु ने कहा,
एक अमीर आदमी था जो बढ़िया और महंगे कपड़े पहनता और ऐश किया करता था, और लाजर नाम का एक भिखारी भी था जिसकी देह पर फोड़े ही फोड़े थे, और वो अमीर आदमी के दरवाजे पर पड़ा रहता था। उस अमीर आदमी की मेज से गिरी जूठन खाकर लाजर अपना पेट भर लिया करता था। वो समय आया जब वो गरीब इस दुनिया से चल बसा और फरिश्तों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अमीर आदमी भी मर गया और दफना दिया गया। वो नरक की पीड़ा से तड़प उठा और उसने आंख उठाई तो लाजर को स्वर्ग में बैठा देखा। चिल्लाते हुए उसने अब्राहम से कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर कृपा करें और लाजर को भेजें कि वो पानी से भीगी अपनी उंगली मेरी जीभ पर रखकर उसे ठंडा करे, क्योंकि मैं आग की सी लपटों में झुलस रहा हूं। लेकिन अब्राहम ने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन काल में तुमने अच्छी चीजों का मजा उड़ाया और लाजर तंगी और अभाव में जीता रहा, लेकिन अब वो मजे में है और तुम तकलीफ में। इसके अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी दूरी है, इस वजह से उधर से इधर कोई आ जा नहीं सकता। तब उसने कहा, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप लाजर को मेरे घर भेजकर पांच भाइयों को चिताएं, ताकि वे इस पीड़ा की जगह आने का फैसला ना करें। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की तालीम है, वे उनको सुने। तब वो बोला, नहीं पिता अब्राहम, अगर मरे हुओं में से कोई उनके पास जाएगा तो वे उसकी सुनेंगे। तब अब्राहम ने अमीर व्यक्ति से कहा, जब वे मूसा और नबियों की बातें नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठकर उन्हें बताएगा तो वे उसकी क्यों सुनेंगे।
लूका अध्याय 17। तब यीशु ने शिष्यों से कहा,
ये हो नहीं सकता कि लोगों को ठोकर ना लगे, लेकिन अफसोस उस पर जिसके जरिए वे ठोकरें लगती हैं। ये उसके लिए भला होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुन्दर की गहराई में डुबो दिया जाए, ताकि वो इन छोटों में से किसी एक को नुकसान ना पहुंचा सके। सावधान रहना, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ गुनाह करे तो उसे डांटो, यदि वो मन बदलता है तो उसे माफ करना। अगर वो तुम्हारे खिलाफ एक ही दिन में सात बार गुनाह करे और सातों बार आकर कहे, मुझे माफ करो, तो उसे माफ करना।
तब प्रेरितों ने आकर यीशु से कहा,
हमारे भरोसे को बढ़ाइए।
यीशु ने कहा,
अगर तुम्हारे पास सरसों के बीज के बराबर भरोसा है, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे, उखड़कर समुन्द्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। यदि तुम में से किसी के पास एक नौकर है जो हल जोतने या भेड़े चराने के बाद जैसे ही आए उससे कहेगा, जाओ खाना खाने के लिए बैठो, नहीं तुम तो नौकर से कहोगे, तैयारी करो और मेरे लिए खाना परोसो, उसके बाद ही तुम खाना खाना। क्या तुम उस नौकर को उसकी आज्ञाकारिता के लिए धन्यवाद दोगे? मैं नहीं समझता। इसलिए तुम भी कहे हुए काम करने के बाद कहो, हम बहुत निकम्मे ठहरे हैं, हमने वही सब किया जो हमें करना था।
यरूशलेम जाते समय यीशु को समरिया और गलील से होकर जाना पड़ा। जैसे ही यीशु एक गांव में दाखिल होने वाले थे, उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे काफी फासले पर थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा,
मालिक यीशु, हम पर रहम करें।
उन्हें देखते ही यीशु ने उन लोगों से कहा,
जाकर अपने आप को पुरोहित के सामने पेश करो।
जब वे रास्ते में जा ही रहे थे, तभी सब के सब अच्छे हो गए। ठीक हो जाने पर उनमें से एक ने मुड़कर ऊंची आवाज से परमेश्वर की बड़ाई की। अपने मुंह के बल गिरकर उसने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया। वह सामरिया का वासी था। यीशु ने यह सब देखकर सामरी से पूछा,
क्या सभी 10 ठीक नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ हैं?
इसके अलावा बाकी लोग धन्यवाद देने नहीं लौटे। यीशु ने कहा,
उठो और वापस जाओ, तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम ठीक हो चुके हो।
एक बार जब एक धार्मिक अगुवे ने यीशु से परमेश्वरीय शासन के आने के बारे में पूछा तो यीशु ने कहा,
इंतजार करने से परमेश्वर का राज्य नहीं आता है, ना ही लोग कहेंगे वो यहां है या वहां है। सच्चाई ये है कि ये शासन तुम्हारे बीच ही में है।
यीशु ने शिष्यों से कहा,
समय आने वाला है जब तुम मुझे देखना चाहोगे लेकिन देख नहीं पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वो यहां या वहां है, तुम उनके पीछे पीछे मत चले जाना। जिस तरह से आसमान में बिजली एक ओर से निकलकर दूसरी ओर तक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे दुख उठाना है और मुझे ठुकराया जाएगा। जैसा नूह के समय में हुआ करता था, वैसा ही मेरे आने से पहले होगा। उस समय भी लोग खाने पीने और शादी करवाने में तब तक लगे रहे जब तक नूह जहाज में दाखिल ना हुआ और प्रलय ने सबको बर्बाद कर दिया। जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसा ही होगा। वे सब खाने पीने, खरीदने बेचने और इमारतें बनाने में लगे थे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से बाहर आया, आग और गंधक ऊपर से गिरी और सभी बर्बाद हो गए। ऐसा ही उस दिन होगा जब मैं दिखाई दूंगा। उस दिन जो घर की छत पर हो और जिसका सामान घर के अंदर हो, उसे सामान लेने नहीं जाना चाहिए, ना ही उसे जो बाहर मैदान में हो। लूत की पत्नी को याद रखना, जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो खोएगा वही उसे बचा पाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उस रात एक बिस्तर पर दो जन होंगे, एक उठा लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो व्यक्ति चक्की चला रहे होंगे, एक को उठा लिया जाएगा दूसरा यूं ही छोड़ दिया जाएगा। दो इंसान खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
उन लोगों ने कहा,
प्रभु ऐसा कहां होगा?
यीशु ने कहा,
जहां लाश होती है वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं।
लुका अध्याय 18। लोगों को यह सिखाने के लिए कि उन्हें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहना चाहिए। यीशु ने यह बताया कि
एक शहर में एक जज था जो ना इस दुनिया के मालिक से डरता था और ना इंसान की इज्जत करता था। एक बार उसी शहर की रहने वाली एक विधवा उसके पास आकर कहने लगी, मेरे दुश्मन के खिलाफ मुझे इंसाफ दिलाओ। कुछ समय तक उस जज ने उसकी विनती की परवाह नहीं की, लेकिन बाद में उसने अपने आप से कहा, हालांकि ना ही मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना इंसान की इज्जत करता हूं, फिर भी क्योंकि ये विधवा मुझे परेशान करती रहती है, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा।
यीशु ने कहा,
देखा तुमने कि उस जज का रवैया कैसा था? इसलिए जो लोग सब्र से सहते रहते हैं और जो दिन रात परमेश्वर को पुकारते हैं, उन्हें क्या वो इंसाफ नहीं दिलाएंगे? मैं तुमको बताए देता हूं कि वो बहुत ही जल्दी उनके लिए इंसाफ का काम करेंगे। फिर भी जब मैं दोबारा आऊंगा तो कितने लोगों को पा सकूंगा जिनमें विश्वास होगा?
कई दृष्टांत यीशु ने उन लोगों को बताए जो अपने आप को बहुत मजहबी समझते थे और दूसरे लोगों को नीचा या कम समझा करते थे।
दो जन मंदिर में भजन कीर्तन करने गए, एक फरीसी था दूसरा टैक्स लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर परमेश्वर से कहने लगा, हे मालिक, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, डाका डालने वाला, बेइंसाफ, कुकर्मी या इस टैक्स इकट्ठा करने वाले की तरह। हर हफ्ते मैं दो बार उपवास रखता हूं, हर चीज का दसवां भाग देता हूं। टैक्स इकट्ठा करने वाले ने आसमान की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं की और छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ दुष्ट पर रहम कर। क्या तुम्हें ये मालूम है कि ये दूसरा इंसान बेगुनाह ठहराया गया, इसलिए कि हर इंसान जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा ऊपर उठाया जाएगा।
वह लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि वह उन्हें छुएं, लेकिन जब शिष्यों ने देखा तो लोगों को घुड़का। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा,
छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि अबोध लोग ही परमेश्वरीय राज्य के हिस्सेदार बनते हैं। मैं सच कहता हूँ कि जो छोटे बच्चों की तरह परमेश्वरीय राज्य को नहीं अपनाते वे उसमें कभी दाखिला नहीं पाएंगे।
एक ऑफिसर ने यीशु से पूछा,
अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
यीशु बोले,
मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई अच्छा नहीं है। तुम आज्ञाओं को तो जानते हो, कुकर्म न करना, खून न करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही से बचना और अपने माता पिताजी की इज्जत करना।
उसने कहा,
ये सब मैं जवानी से करता आ रहा हूँ।
यह सुनने के बाद यीशु ने कहा,
अभी भी तुम में एक कमी है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हें खजाना मिलेगा। हाँ, मेरा शिष्य भी बन जाओ।
यह सब सुनकर वह अफसोस करने लगा, क्योंकि वह बहुत दौलतमंद था। उस आदमी को दुखी देखकर यीशु ने कहा,
अमीर लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कितना मुश्किल है, क्योंकि एक ऊंट के लिए सुई के नाके में से निकलना आसान है, लेकिन अमीर आदमी का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कठिन है।
तब वहां पर खड़े सुनने वालों ने कहा,
तो पापों की क्षमा कौन पा सकेगा?
तभी यीशु ने कहा,
जो बातें इंसान से नहीं हो सकती हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकते हैं।
तब पत्रस ने जवाब में कहा,
देखिए, हम सब कुछ छोड़कर आपके शिष्य बन गए हैं।
यीशु ने उससे कहा,
सच तो ये है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने घर, माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन इसी दुनिया में कई गुना और आने वाली दुनिया में हमेशा की जिंदगी ना पाए।
तब बारों को पास लाकर यीशु ने उनसे कहा,
हम सब यरूशलेम को रवाना होंगे और जो बातें मेरे बारे में नबियों ने कही थी पूरी होंगी, क्योंकि उसे गैर यहूदियों के हाथ सुपुर्द किए जाने के साथ उसकी बेइज्जती की जाएगी, हंसी उड़ाई जाएगी और उस पर थूका जाएगा। वे लोग उसे कोड़े मारेंगे और उसकी जान ले लेंगे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा।
यह सब बातें उनकी समझ में नहीं आई और उनसे छिपी रही, और जो कुछ उनसे कहा जा रहा था वे समझ नहीं पाए। जब यीशु यरीहो के पास पहुंचे तो उन्होंने एक भिखारी को बैठे भीख मांगते हुए देखा। वहां से भीड़ के गुजरने का एहसास होते ही उसने हलचल का कारण पूछा। लोगों ने उत्तर दिया,
नासरत के यीशु चले जा रहे हैं।
चिल्लाते हुए उसने कहा,
दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कीजिए।
सामने जाने वाले लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन वे और ऊंची आवाज में चिल्लाया,
दाऊद के बेटे, मुझ पर दया करें।
यीशु वहीं रुक गए और उन्होंने आदेश दिया कि उसे उनके पास लाया जाए। उसके पास आते ही यीशु ने उससे पूछा कि वह चाहता क्या है। उसने कहा,
यही कि मैं देखने लगूं।
यीशु बोले,
तुम देखने लगो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है।
उसी समय से वह देखने लगा। परमेश्वर की तारीफ करने के साथ ही वह यीशु को मानने लगा, और सभी लोगों ने यह देखकर परमेश्वर की स्तुति की। लूका अध्याय 19। यीशु यरीहो नामक जगह से जा रहे थे। उसी वक्त जकाई नाम के टैक्स कलेक्टरों के अमीर प्रधान के मन में उन्हें देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। हालांकि उसने चाहा कि यीशु को देख ले, लेकिन भीड़ के कारण और नाटा होने की वजह से वह मुश्किल पा रहा था। उसी रास्ते पर दौड़ते हुए वह एक गुलर के पेड़ पर जा बैठा। यीशु वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा और कहा,
जक्कई, जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे यहाँ आकर खाना खाऊंगा।
वह झटपट नीचे उतर आया और बड़ी खुशी से वह यीशु को अपने घर ले गया और उनका स्वागत किया। यह सब देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे,
अरे यीशु तो दुष्ट इंसान के यहाँ जा रहे हैं।
खड़े होकर जकाई यीशु से कहने लगा,
देखिए यीशु, मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने धोखाधड़ी से किसी को लूटा है तो उसका चौगुना भर दूंगा।
यीशु ने कहा,
आज इस घर में पापों की माफी आई है, क्योंकि जकई भी अब्राहम के वंश का है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने आया है।
इसलिए कि वे लोग परमेश्वर के राज्य के बहुत जल्दी आने के बारे में कायल थे, यरूशलेम के पास आते ही, जबकि उनके कान इन सब बातों को सुनने के लिए खुले थे, यीशु ने यह दृष्टांत बतलाया।
एक अमीर आदमी ने बहुत दूर देश को जाकर अपने लिए राज्य जीतकर वापस आने की योजना बनाई। इसके पहले उसने अपने 10 सेवकों को बुलाकर 10 मोहरें दी और कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं, इसे कारोबार में लगा दो। लेकिन उसी के लोगों ने उससे नफरत के कारण अपने संदेश वाहकों के हाथ ये कहलाकर भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हमारे ऊपर राज्य करे। राजपद पाकर जब वो लौटा तो उसने अपने नौकरों को, जिन्हें पैसे दिए थे, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि लेन देन करके उन्होंने क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे मालिक, आपके पैसों से मैंने उतना ही और कमा लिया है। उसने उससे कहा, शाबाश, तुम थोड़े से पैसे में ईमानदार रहे, अब से तुम 10 नगरों पर अधिकार ले लो। दूसरे ने भी वहां आकर कहा, मालिक, देखिए ये रहा वो पैसा जो आपने मुझे दिया था, मैंने उतने ही और कमा लिए हैं। उसको भी मालिक ने 5 नगरों की जिम्मेदारी दे दी। तीसरा भी वहां आकर मालिक से कहने लगा, ये रहा वो पैसा जो आपने मुझे दिया था, मैंने इसे अच्छी तरह कपड़े में लपेट कर रख दिया था, इसलिए कि आप कठोर स्वभाव के हैं, मुझे आपसे डर लगता है। आप तो जहां रखते नहीं वहीं ढूंढते हैं, और जहां बोते नहीं वहीं काटते हैं। तब उस अमीर आदमी ने कहा, हे दुष्ट इंसान, तुम्हारे मुंह के कहने के मुताबिक मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। मैं जहां रखता नहीं हूं वहीं से अपेक्षा करूंगा, और जहां बोता नहीं हूं वहीं काटूंगा। तुमने मेरी दी हुई रकम को बैंक में क्यों नहीं रख दिया था, ताकि ब्याज के साथ मुझे मेरा पैसा मिलता। वहां पर खड़े हुए लोगों से मालिक ने कहा, इस आदमी से पैसा लेकर उसको दे दो जिसने सबसे ज्यादा कमाया है। लोगों ने कहा, मालिक, उसके पास तो पहले ही से 10 मोहरे हैं। मालिक ने फिर कहा, जिसके पास पहले से है उसे और मिलेगा, जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मेरे उन दुश्मनों को मेरे पास यहां ले आओ जो नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, मेरे सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
यह सब कहकर यीशु आगे यरूशलेम को बढ़ गए। जब वे बैतफगे और बैतनिया में जैतून के पहाड़ पर पहुंचे, यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा कि
सामने के गांव में तुम जैसे ही दाखिल होगे, तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, उसे खोलकर यहां ले आओ। अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो कहना कि यीशु को इसकी जरूरत है।
भेजे हुए लोगों ने जाकर वैसा ही पाया जैसा उन्हें बताया गया था। जब वह उसे खोल रहे थे, मालिक ने उनसे पूछा,
ये क्या कर रहे हो?
तभी उन्होंने कहा,
यीशु को इसकी जरूरत है।
वह गधी यीशु के पास ले आए और उस पर अपने कपड़े डालकर यीशु को उस पर बिठाया। चलते वक्त वे अपने कपड़े भी सड़क पर डालते गए। जब यीशु जैतून के पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, शिष्यों की भीड़ ऊंची आवाज से खुशी से भरकर परमेश्वर के किए गए बड़े कामों के लिए बड़ाई कर रही थी। वे चिल्ला रहे थे,
जो राजा प्रभु के नाम से आ रहा है वह महान है, आसमान में शांति और ऊंचाई पर उनकी महिमा हो।
उस भीड़ में से कुछ फरीसियों ने कहा,
गुरुजी, अपने शिष्यों को डांटिए, वे शोर मचा रहे हैं।
जवाब में यीशु ने कहा,
मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि अगर ये लोग मेरी बड़ाई नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।
शहर के पास आते ही यीशु रोने लगे और बोले,
अच्छा होता अगर तुमने आज सुकून देने वाली बातों को जाना होता, लेकिन वे बातें तुम्हारी नजर से छिपी हुई हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ बाड़ा बांधेंगे, वे तुम्हें तहस नहस कर डालेंगे, वे एक पत्थर को भी यहां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने दिए गए मौके की कीमत नहीं जानी।
इसके बाद प्रार्थना भवन के अहाते में जाकर यीशु बेचने वालों को खदेड़ने लगे और कहा,
ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना डाला है।
यीशु हर दिन प्रार्थना भवन में सिखाते रहे, लेकिन प्रधान पुरोहित, शिक्षक और अगुओं ने उन्हें नाश करने की योजना बनाई। वह कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सभी लोग बड़े ध्यान से यीशु की बातों को सुन रहे थे। लूका अध्याय 20। किसी एक दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ लोगों को सुसमाचार दे रहे थे, प्रधान पुरोहित और शिक्षक बुजुर्ग लोगों के साथ वहां आ खड़े हुए। उनका कहना था कि यीशु यह बताएं कि किसके अधिकार में होकर वे ये सब कर रहे थे, या किसने यीशु को यह अधिकार दिया था। यीशु ने जवाब में कहा,
मैं भी एक बार तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम जवाब दो, यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या इंसान की ओर से?
वे आपस में कहने लगे,
अगर हम कहें परमेश्वर की तरफ से, तो यीशु कहेंगे कि फिर तुमने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हम कहें वह मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा थी, तो सब लोग हमको पत्थरवाह कर देंगे, क्योंकि यूहन्ना को वे एक नबी समझते थे।
इसलिए उन्होंने उत्तर दिया,
हमें कुछ नहीं मालूम।
यीशु ने भी उनसे कहा,
मैं भी तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं किसके अधिकार से ये सब करता हूं।
तब यीशु लोगों को यह दृष्टांत बताने लगे,
एक आदमी ने अंगूर का बगीचा लगाया और किसानों के हाथ जिम्मेदारी देकर बहुत दिनों के लिए दूर देश चला गया। फसल काटे जाने के समय उसने एक नौकर को मजदूर किसानों के पास भेजा ताकि वे बगीचे से कुछ अंगूर उसे दें, लेकिन उन मजदूरों ने उसे मार पीट कर खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर उसने दूसरे नौकर को भेजा, उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन उसे भी जख्मी करके बाहर फेंक दिया गया। तब उस बगीचे के मालिक ने कहा, मैं क्या करूं, अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, शायद उसे देखकर वे उसे इज्जत देंगे। जैसे ही अंगूर के बगीचे के उन मजदूरों ने उसे देखा तो कहा, ये तो जायदाद का मालिक है, आओ इसे मार डालें ताकि सब कुछ हमारा हो जाए। इसलिए उन लोगों ने उसे बगीचे के बाहर मार डाला। ऐसे में बगीचे का मालिक उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। उसने आकर उन बगीचे के मजदूरों को मार डाला और बगीचा दूसरों को दे दिया।
यह सब सुनने पर उन्होंने कहा,
परमेश्वर ना करे ऐसा हो।
उसने उनको देखकर कहा,
तो वो लिखी हुई बात किसके लिए है, जिस पत्थर को ठेकेदारों ने बेकाम का समझा था वही कोने का पत्थर ठहरा है। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा।
उस समय प्रधान पुरोहित और शास्त्री इस धुन में थे कि यीशु को किस तरह पकड़ लें, लेकिन उन्हें लोगों का डर था। वे ये समझ गए थे कि यीशु इस दृष्टांत से उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। वे यीशु की ताक में लगे थे और उन्होंने जासूस भेजे कि धर्म का भेज धरकर यीशु की कोई ना कोई बात पकड़ें, ताकि उन्हें गवर्नर के हाथ और अधिकार में सौंप दें। यीशु से बातचीत करते हुए उन लोगों ने पूछा,
गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं कि आप परमेश्वर का रास्ता बताते और खरा उपदेश देते हैं, और किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। बताइए कि हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं।
उनकी चालाकी को जानकर यीशु ने उन लोगों से कहा,
तुम मेरी परख क्यों कर रहे हो? चांदी का सिक्का मुझे दिखाओ, इसके ऊपर किसकी तस्वीर खुदी हुई है?
उन लोगों ने कहा,
राजा की।
यीशु बोले,
जो राजा का हिस्सा है वो राजा को दो, और जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को।
यीशु के लोगों की मौजूदगी की वजह से यीशु की कही हुई बातों पर ना ही उनके विरोधियों ने कुछ टीका टिप्पणी की और ना ही कोई जवाब दिया। तब जी उठने पर विश्वास ना करने वाले सदूकियों ने आकर सवाल किया,
गुरुजी, मूसा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी जिसके बच्चे नहीं हैं मर जाए तो उसका भाई उस महिला से ब्याह करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। मान लें कि सात भाई थे और पहले का ब्याह तो हुआ लेकिन इसके पहले के बच्चे हों वो मर गया। दूसरे भाई ने उस महिला से शादी की लेकिन वो भी निसंतान मर गया। तीसरे भाई ने उस महिला को अपनी बीवी करके अपना लिया। इस तरह से सभी सात भाई निसंतान मर गए। आखिर में वो महिला भी चल बसी। इसलिए जब सब जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वह तो सातों भाइयों की पत्नी रही थी।
जवाब में यीशु ने कहा,
इस दुनिया के लोग ब्याह करते और करवाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक होंगे कि आने वाली दुनिया के वारिस हों और जी उठने वालों में उनकी गिनती हो, उनके लिए वहां ब्याह नहीं है। वे लोग फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों की तरह होंगे और वे परमेश्वर की संतान हैं जो एक नया जीवन जीने के लिए जिलाए जाएंगे। अब ये कि मुर्दे जिलाए जाएंगे या नहीं, मूसा ने भी झाड़ी की घटना में बताया है, अब्राहम, इजहाक और याकूब के मरने के बहुत समय बाद वो परमेश्वर को अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर मुर्दों के नहीं लेकिन जीवित लोगों के हैं, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक सभी जीवित हैं।
यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने कहा,
हे गुरु, आपने अच्छा कहा।
इसके बाद उनमें से किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यीशु ने उन लोगों से कहा,
मसीह दाऊद का बेटा क्यों कहलाता है? दाऊद ने भी खुद भजन की किताब में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे वश में ना कर दूं, सारे अधिकार को थामे रखो। दाऊद उन्हें प्रभु कहकर पुकारता है, तो फिर वो उसकी संतान कैसे हुए?
लोग उनकी बात को सुन रहे थे, तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा,
शास्त्रियों से सावधान रहो, उनको लंबे लंबे चोगे पहनकर घूमना अच्छा लगता है। वे बाजारों में लोगों से नमस्कार लेते फिरते हैं, उन्हें सभा सम्मेलनों में आगे की जगह और दावतों में मुख्य स्थान पसंद होते हैं। वे विधवाओं पर अन्याय करके उन्हें लूट लेते हैं और दिखावे के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। इन्हें तो भारी सजा मिलेगी।
लूका अध्याय 21। यीशु ने प्रार्थना भवन की दान पेटी में अमीर लोगों को पैसा डालते देखा। यीशु ने एक गरीब विधवा को भी दो तांबे के छोटे सिक्कों को डालते देखा। तभी यीशु ने कहा,
मैं तुम्हें एक सच्चाई बतलाता हूं, इस गरीब विधवा ने दूसरे सभी लोगों से ज्यादा दान दिया है। इन सभी ने परमेश्वर को दी गई भेंट को अपनी दौलत की बहुतायत में से दिया है, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बचत में से इस विधवा ने दिया है।
जैसा कि कुछ लोग प्रार्थना भवन के बारे में बात कर रहे थे कि इसे किस तरह खूबसूरत पत्थरों और भेंट आदि से संवारा गया है, यीशु बोल उठे,
जहां तक इन दिखने वाली चीजों का सवाल है, ऐसे दिन आने वाले हैं जबकि एक पत्थर पर दूसरा नहीं दिखाई देगा, वे सभी ढा दिए जाएंगे।
वे पूछने लगे,
गुरुजी, ऐसा कब होने वाला है? इन घटनाओं के होने का निशान क्या होगा?
यीशु बोले,
सावधान रहो कि तुम घबरा ना जाओ। बहुत से लोग ये दावा करते हुए आएंगे कि वे यीशु मसीह हैं, और समय आ ही रहा है, इसलिए उनकी मत सुनना। इसलिए जब तुम युद्ध और गड़बड़ियों की खबर सुनो,
डरना मत, इसलिए कि उनका होना जरूरी है लेकिन अंत फिर भी दूर होगा।
तब यीशु ने उनसे कहा,
एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। अलग अलग जगह महामारी आएगी, आसमान में डरावनी चीजें दिखेंगी और बड़े बड़े चिन्ह भी, लेकिन इन सब के पहले वे तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे और जेल के हवाले कर डालेंगे। मुझसे नफरत के कारण तुम्हें शासकों और अधिकारियों के सामने लाया जाएगा। इससे तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम मेरे बारे में बताओ। इसलिए ये पहले से ठान लो कि ये सोचोगे भी नहीं कि जवाब क्या दिया जाए, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ भी दूंगा और शब्द भी कि तुम्हें क्या कहना है। कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर सकेगा, यहां तक कि तुम्हारे माँ बाप भाई रिश्तेदार तुम्हें धोखा देंगे। तुम में से कुछ को वे लोग मार भी डालेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सकेगा। तुम्हारे सब्र और सहने की योग्यता की वजह से तुम अपने प्राणों को बचा लोगे। जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा देखो तो समझ लेना कि उसकी बर्बादी नजदीक है। तब जो लोग यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो शहर के अंदर हों बाहर ना जाएं, और जो खेतों में हों शहर में आने की कोशिश ना करें। ये बदला लिए जाने के दिन होंगे, ताकि जो कुछ लिखा है वो सभी पूरा हो। अफसोस इस बात का है कि शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं को उन दिनों में बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी, इसलिए कि इन लोगों पर भारी कलेश आ पड़ेगा। उन्हें तलवार की धार का सामना करना पड़ेगा और गुलाम की तरह वे तमाम देशों में ले जाए जाएंगे। यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों तले तब तक रौंदा जाएगा जब तक गैर यहूदियों का समय पूरा ना हो जाए। सूरज चांद और सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे। इसके साथ ही संसार के देशों में घबराहट छा जाएगी। इसके साथ समुद्र में गर्जन होगा और लहरें बेकाबू हो जाएंगी, जिससे लोग डर के मारे कांप उठेंगे। पृथ्वी पर घटने वाली वारदातों की वजह से इंसान के मन में डर समा जाएगा, क्योंकि आसमान की ताकतें हिलाई जाएंगी। और तब वे मुझे बड़ी शान शौकत रौनक और महिमा के साथ बादलों पर सवार होकर उतरते देखेंगे। जब ये सब होने लगे तब अपने सिर ऊपर की तरफ उठाना, क्योंकि तुम्हारी आजादी काफी नजदीक आ चुकी होगी।
यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत बतलाया।
अंजीर के और दूसरे पेड़ों को देखो, जैसे ही उनकी पत्तियां निकलने लगती हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी का मौसम आने वाला है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। मैं सच कह रहा हूं कि जब तक सब बातें पूरी ना हो जाएं, इस पीढ़ी का खात्मा नहीं होगा। आसमान और जमीन अपनी जगह से हट सकते हैं, लेकिन मेरी बातें पूरी होकर ही रहेंगी। इसलिए जागते रहो, ताकि तुम्हारे मन कहीं मतवालेपन और पारिवारिक चिंता से सुस्त ना हो जाएं और वो दिन अचानक तुम पर आ पड़े। इसलिए कि ये समय सारी धरती पर रहने वालों पर एक जाल के समान आ पड़ेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन आने वाली बातों से बच सको और मेरे सामने हिसाब दे सको।
दिन के समय में यीशु प्रार्थना भवन में सिखाया करते थे और रात में जैतून पहाड़ पर समय बिताते थे। सुबह के समय सभी लोग प्रार्थना भवन में यीशु की सुनने आया करते थे। लुका अध्याय 22। फसा का त्यौहार, जिसे अखमीरी रोटी का त्यौहार भी कहा जाता है, पास आ चुका था। प्रधान पुरोहित और शास्त्री, जो लोगों से डरते थे, इस फिराक में थे कि यीशु को कैसे मार डालें। बारों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसमें शैतान दाखिल हो गया। प्रधान पुरोहितों और प्रार्थना भवन के सुरक्षा कर्मियों के प्रमुख से उसने बातचीत की कि वह किस तरह से यीशु को उनके हाथों पकड़वा सकेगा। उसकी चाल उन्हें पसंद आ गई और उन लोगों ने उसे पैसे देने का वायदा किया। वह भी अपना वचन देकर ऐसे मौके की तलाश में लग गया जब यीशु के साथ भीड़भाड़ ना हो। फसा की कुर्बानी का समय यानी कि अखमीरी रोटी का दिन आ ही पहुंचा। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को भेजा कि फसा के खाने की तैयारी करें। उन दोनों ने सवाल किया,
आप कहां चाहेंगे कि इसकी तैयारी की जाए?
यीशु ने उन दोनों से कहा,
शहर में दाखिल होते ही तुम पानी का घड़ा उठाए एक व्यक्ति को पाओगे, जिस घर में वो जाए वहीं तुम भी चले जाना। घर के मालिक से कहना, गुरु ने पूछा है कि मेहमानों का कमरा कहाँ है जहां पर मैं अपने शिष्यों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक सजा सजाया घर दिखा देगा, वहीं सारी तैयारी करना।
जैसा उनको बताया गया था उन्होंने वैसा ही पाया और उन्होंने फसा की तैयारी की। और जब वह दिन और समय आ गया, यीशु अपने शिष्यों के साथ फसा खाने बैठे। यीशु बोले,
इसके पहले कि मैं दुख उठाऊं, मेरी दिली तमन्ना ये रही है कि तुम सब के साथ मिलकर फसा खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे नहीं खाऊंगा।
तब प्याले को लेकर धन्यवाद देते हुए यीशु ने कहा,
इसे आपस में बांट लो। मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक मैं अंगूर का रस ना पीऊंगा।
यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ी और ये कहते हुए उन्हें दी,
ये मेरी देह है जिसे तुम्हारे लिए दिया गया है, मुझे याद करने के लिए यही करना।
रोटी खाने के बाद यीशु ने प्याले के साथ भी वैसा ही किया जैसा रोटी के साथ किया था और कहा,
ये प्याला मेरे खून में जो तुम्हारे लिए बहाया जाने वाला है नई वाचा है, लेकिन देखो जो दगा देने वाला है उसका हाथ मेरे साथ मेज पर है। जैसा होना है उसके मुताबिक तो मेरे साथ होगा ही, लेकिन अफसोस उस पर जो मेरे साथ विश्वासघात करेगा।
तब वे सभी आपस में इस बात पर सवाल जवाब करने लगे कि आखिर उनमें से कौन ऐसा करेगा। उन सब के बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि बड़ा कौन है। यीशु ने उनसे कहा,
गैर यहूदियों में राजा शासन करते हैं और जो उनके ऊपर अधिकार का इस्तेमाल करते हैं हितैषी कहलाते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बीच बड़े को छोटा बनना चाहिए और अगुए को सेवा करनी चाहिए। आखिर बड़ा कौन है, जो खाना खा रहा है या जो परोस रहा है? क्या खाने वालों को बड़ा नहीं समझा जाता है? लेकिन मैं तो तुम सब के साथ सेवक की तरह हूं। तुम ही हो जो मेरे परखे जाने के समय मुझे सहारा देते रहे हो। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे राज्य का हक दिया है, मैं भी तुम्हें एक राज्य देता हूं, ताकि मेरे राज्य में मेरी मेज पर से तुम भी खाओ और तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करो।
यीशु ने कहा,
शमौन शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये मांगा है कि तुम्हारा विश्वास डावाडोल ना हो, और जब तुम वापस मजबूत हो जाओ तो अपने भाइयों को मजबूत करना।
उसने यीशु को जवाब दिया,
स्वामी जी, आपके लिए मैं सिर्फ कैद में जाने के लिए ही नहीं लेकिन मरने के लिए भी तैयार हूँ।
यीशु ने कहा,
मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि इसके पहले कि मुर्गा बांग दे तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुके होगे।
यीशु बोले,
ये बताओ, जब मैंने तुम्हें बिना बटुआ झोला और चप्पल भेजा था तब क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई?
वह सभी बोल उठे,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब यीशु ने उनसे कहा,
लेकिन अब जिसके पास एक बटुआ है वो उसे ले और एक झोला भी ले, जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने कपड़े बेचकर एक तलवार खरीद ले। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कुछ लिखा है वो पूरा होगा, और वो ये है, तमाम अपराधियों में उसे भी अपराधी गिना गया, मेरे बारे में लिखी बातें पूरी होंगी ही।
वह कहने लगे,
गुरुजी देखिए, यहाँ पर 2 तलवारें हैं।
यीशु ने कहा,
काफी हैं।
जैसा कि यीशु की आदत बन चुकी थी, यीशु जैतून पहाड़ पर गए और उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचने पर यीशु ने उनसे कहा,
प्रार्थना करो कि तुम प्रलोभन के शिकार न बनो।
यीशु उनसे थोड़ी दूर जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर से कहने लगे,
पिताजी अगर आप चाहें ये प्याला अर्थात आने वाला दुख मुझ पर ना आने दीजिए, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो।
तभी आसमान से एक स्वर्गदूत आकर यीशु को हिम्मत देने लगा। पीड़ा ही में यीशु और ज्यादा परमेश्वर पिता से बातचीत करने लगे और यीशु मसीह का पसीना खून की बड़ी बूंदों की तरह जमीन पर टपक रहा था। वहां से वापस अपने शिष्यों के पास आने पर यीशु ने उन्हें उदासी की वजह से सोते हुए पाया और उनसे कहा,
तुम लोग सो क्यों रहे हो? उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ जाओ।
जब यीशु ऐसा कह ही रहे थे तभी वहां अचानक एक भीड़ आ पहुंची। यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था भीड़ के आगे चला आ रहा था। यीशु का चुंबन लेने के लिए वे आगे बढ़ा लेकिन यीशु बोले,
यहूदा क्या चुंबन लेकर तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो?
यीशु के साथ चारों तरफ खड़े लोगों ने जब ये देखा तो बोल उठे,
गुरुजी क्या हम तलवार से हमला बोलें?
उनमें से किसी एक ने तलवार चलाकर प्रधान पुरोहित के नौकर का कान काट डाला। इसके बाद यीशु ने उसके कान को छूकर उसे ठीक कर दिया। इसके बाद यीशु ने प्रधान पुरोहित प्रार्थना भवन के सुरक्षा अधिकारियों और बुजुर्गों से कहा,
क्या तुम मुझे चोर की तरह पकड़ने के लिए तलवारों और दूसरे हथियारों के साथ आए हो? मैं हर दिन प्रार्थना भवन में तुम्हारे साथ ही रहा करता था, तब तुम में से किसी ने भी मेरे खिलाफ हाथ न उठाया, लेकिन इस समय के तुम ही मालिक हो और शैतान की शक्ति भी तुम्हारे पक्ष में है।
तब वे लोग यीशु को अपने साथ प्रधान पुरोहित के घर तक ले गए, लेकिन पतरस धीरे धीरे पीछे चलता गया। जहां लोग आंगन में आग जलाकर बैठे ताप रहे थे वहीं पतरस भी जाकर बैठ गया। तभी एक नौकरानी ने पतरस को वहां बैठे देखकर कहा,
ये आदमी भी यीशु के साथ था।
पतरस ने तुरंत कहा,
हे महिला मैं तो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं।
कुछ समय के बाद किसी और ने पतरस को वहां बैठे देखा और कहा,
तुम भी उसके साथ थे?
लेकिन पतरस बोला,
हरगिज नहीं, मैं तो उसे जानता ही नहीं।
एक घंटे बाद किसी और ने कहा,
सचमुच ये व्यक्ति उसके साथ था क्योंकि ये भी गलीली है।
तब पतरस ने कहा,
भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
उसी समय यीशु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को भी यीशु की कही बात याद आई कि मुर्गे के बांक देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुकोगे। तभी पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। जो लोग यीशु को पकड़े हुए थे वे यीशु का मजाक उड़ा रहे थे और उसे मार रहे थे। यीशु की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने थप्पड़ मार कर पूछा,
बताओ किसने मारा?
यीशु के खिलाफ वे और बुरी बुरी बातें कह रहे थे। सुबह होते ही बुजुर्ग अगुए प्रधान पुरोहित और शास्त्री मिलकर आए और यीशु को सभा में ले गए और उनसे पूछने लगे,
क्या तुम ही मसीह हो?
यीशु ने कहा,
अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम यकीन ना करोगे, अगर मैं तुमसे सवाल करूँ तुम ना तो जवाब दोगे और ना ही मुझे जाने दोगे। अब से मैं परमेश्वर के सारे अधिकार के साथ होऊंगा।
तब सभी ने सवाल किया,
क्या आप परमेश्वर से ही हैं?
यीशु ने उत्तर दिया,
हाँ तुम जो कह रहे हो मैं वही हूँ।
तब उन लोगों ने कहा,
अब हमें और किसी की गवाही की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यीशु के मुंह से सुन लिया है।
लुका अध्याय 23। पूरी सभा वहां से उठकर यीशु को पिलातुस के यहाँ ले गई। यीशु की खिलाफत में उन्होंने कहा,
हमने ये पाया है कि खुद को मसीह और राजा बतलाकर और लोगों को टैक्स न देने को कहकर ये इंसान सारे देश को गुमराह कर रहा है।
पिलातुस ने यीशु से पूछा,
क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो?
यीशु ने जवाब में कहा,
तुम सही कह रहे हो।
तब पिलातुस ने प्रधान पुरोहितों से कहा,
मैं इस इंसान में कोई खोट नहीं पाता हूँ।
और ज्यादा गुस्से में वे कहने लगे,
गलील से लेकर
यहाँ तक कि यहूदियों के बीच शिक्षा दे देकर ये लोगों को भड़काता रहा है।
जब पिलातुस ने गलीली शब्द सुना तो जानना चाहा कि वे गलील के रहने वाले हैं या नहीं। जैसे ही पिलातुस को मालूम पड़ा कि यीशु हेरोदेस के इलाके के हैं, उसने उन्हें तुरंत हेरोदेस के पास भेज दिया। उस समय हेरोदेस यरूशलेम ही में था। हेरोदेस ने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बहुत समय से वह यीशु को और उनके जरिए होने वाले आश्चर्य के कामों को देखना चाहता था, इसलिए यीशु को देखते ही उसे बड़ी खुशी हुई। उसने उनसे काफी पूछताछ की, लेकिन यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहां खड़े प्रधान पुरोहित और शास्त्री उन पर बहुत गुस्से में तमाम आरोपों की बौछार करते रहे। अपने सैनिकों के साथ मिलकर हेरोदेस ने यीशु की बेइज्जती की, मजाक उड़ाया और शाही कपड़े पहनाकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया। इसी दिन पिलातुस और हेरोदेस एक दूसरे के दोस्त बन गए। इसके पहले दोनों में दुश्मनी थी। पिलातुस ने प्रधान पुरोहित और लोगों के दूसरे अगुओं को पास बुलाकर उनसे कहा,
तुम इस व्यक्ति को दूसरों को गुमराह करने के आरोप में मेरे सामने लाए हो, लेकिन जांच पड़ताल के बाद मैंने इसे बेगुनाह पाया है।
ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया कि उसे मौत की सजा सुनाई जाए। हेरोदेस ने भी ऐसा कुछ नहीं पाया, इसलिए मैं उसे सजा देकर छोड़ दूंगा। ऐसा जरूरी भी था कि त्यौहार के समय वह किसी एक अपराधी को आजाद कर दे। वे सभी तुरंत चिल्ला उठे,
ये आदमी हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ा जाए।
बरब्बा को शहर में बलवा करने और खून करने के आरोप में जेल में रखा गया था, इसलिए पिलातुस ने जो यीशु को छोड़ देना चाहता था फिर से उन लोगों को समझाना चाहा, लेकिन वे फिर चिल्ला उठे,
उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर।
तीसरी बार उसने कहा,
क्यों, आखिर उसने ऐसा क्या किया है? मैं तो उसे फांसी की सजा पाने लायक मुजरिम नहीं समझता, इसलिए मैं उसे सजा देकर छोड़ दूंगा।
वहां पर खड़े लोग और जोर जोर से चिल्लाकर यीशु के लिए क्रूस की मौत की मांग करने लगे। प्रधान पुरोहित और वहां खड़े लोगों की बात पिलातुस ने मान ही ली। अंत में उनकी मांग के मुताबिक पिलातुस ने यीशु को मौत की सजा का हुक्म दे दिया, और उन लोगों की मांग के मुताबिक उसने उस आदमी को रिहा कर दिया जिस पर विद्रोह और हत्या का अभियोग था, लेकिन यीशु को उसने उन लोगों के हवाले कर दिया। रास्ते में जाते समय उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी को आते देखा। क्रूस को इन्होंने यीशु के ऊपर से उठाकर इस शिमोन पर लाद दिया। रोती चिल्लाती महिलाएं और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल पड़ी। यीशु ने पीछे मुड़कर उनसे कहा,
यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने और अपने बच्चों के लिए रो। देखो, समय आने वाला है जब सब ये कहेंगे कि सुखी वे हैं जो बांझ थी, और वे गर्भाशय जिनमें शिशु ना रहा, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उन दिनों में वे कहने लगेंगे, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, पहाड़ियों हमें ढांक लो, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा बर्ताव हरे पेड़ से किया है तो सूखे से क्या क्या नहीं करेंगे।
दो और अपराधी क्रूस की सजा के लिए यीशु के साथ ले जाए गए। जब वे कलवरी नामक जगह पर पहुंचे तो वहीं यीशु को और उनके दोनों तरफ इन अपराधियों को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तब यीशु ने कहा,
पिताजी, इन लोगों को माफ करें, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं कि कर क्या रहे हैं।
उन लोगों ने चिट्ठी डालकर यीशु का चोगा भी बांट लिया। वहां खड़े लोग सब कुछ देखते रहे। अधिकारियों ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा,
इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचाए। अगर वे परमेश्वर का चुना हुआ मसीह है तो अपने आप को बचाए।
सैनिकों ने यीशु को सिरका देते हुए ठट्ठा किया और कहा,
यदि तुम यहूदियों के राजा हो तो अपने को बचाओ।
क्रूस ही पर उन्होंने यूनानी, लातीनी और इब्रानी में लिख दिया कि यह यहूदियों का राजा है। टंगे हुए दोनों अपराधियों में से एक ने यीशु से कहा,
यदि आप मसीह हैं तो हमें और अपने आप को बचाइए।
लेकिन दूसरे ने उसे डांटते हुए कहा,
क्या तुम्हें परमेश्वर से डर नहीं लगता कि तुम भी वही सजा पा रहे हो? हम लोग तो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने कुछ बुरा नहीं किया है।
उसने यीशु से कहा,
प्रभु जब आप शासन करें तब मुझे भी याद कर लीजिएगा।
यीशु ने जवाब में कहा,
मैं सच बताऊं तो तुम मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगे।
दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे आसमान में अंधेरा छा गया, सूरज काला पड़ गया और प्रार्थना भवन का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा,
पिताजी मैं अपनी आत्मा आपके सुपुर्द करता हूं।
इतना कहकर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। जब सुबेदार ने यह सब देखा तो ये कहकर परमेश्वर की बड़ाई की,
सच में ये एक खरा व्यक्ति था।
वहां पर इकट्ठे सब लोग यह सब देखकर अपनी छाती पीटते हुए वापस लौट गए। यीशु को जानने वाले उनके दोस्त आदि और गलील से उनके साथ आई हुई स्त्रियां दूर खड़ी होकर इन सारी बातों को देख रही थी। यूसुफ नामक एक व्यक्ति था, वह भला और धर्मी पुरुष था। वह अधिकारियों और याचिकों के विचारों से और इस काम से खुश नहीं था। वे यहूदियों के शहर अरमतिया का निवासी था और परमेश्वर के राज्य के इंतजार में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांग लिया और उसे क्रूस से उतारकर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी। अब तक इस कब्र में कोई भी रखा नहीं गया था। वह फसा की तैयारी का दिन था और सबद का दिन आरंभ होने ही वाला था। उनके साथ गलील से आई हुई स्त्रियों ने इन लोगों के बाद जाकर उस कब्र को देखा और ये भी देखा कि यीशु के शव को उन्होंने कैसे रखा है। वह वापस लौट गईं और उन्होंने सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, परंतु सबद के दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने विश्राम किया। लूका अध्याय 24। हफ्ते के पहले दिन बहुत सुबह ही तैयार किए गए सुगंधित द्रव्यों के साथ वे सब कब्र पर आए। उनके साथ कुछ महिलाएं भी थीं। वहां पहुंचते ही उन्होंने पत्थर को कब्र से दूर लुढ़का हुआ पाया। वह भीतर गईं, लेकिन उन्होंने वहां यीशु के देह को ना पाया। जब वे वहां परेशान खड़ी थीं, तभी अचानक स्वर्गदूत, जिनके कपड़े चमक रहे थे, वहां आ खड़े हुए। जब वे सिर झुकाई डरी हुई जमीन की तरफ मुंह किए हुए थी, तभी उन दोनों फरिश्तों ने कहा,
तुम जिंदा इंसान को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है लेकिन जी उठे हैं। याद करो कि जब वह गलील में थे तब क्या कहा करते थे, यह कि मनुष्य का पुत्र बुरे लोगों के सुपुर्द किया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर से तीसरे दिन जी उठेगा।
तब उन सबको वे बातें याद आ गईं। कब्र से लौटने के बाद इन स्त्रियों ने ये बातें ग्यारों और शेष लोगों को भी बताईं। मरियम मगदलीनी, योना की मां मरियम तथा अन्य महिलाएं जो उनके संग थीं, उन सभी ने ये बातें प्रेरितों को बताईं। लेकिन उन्हें ये सब बातें झूठी या अंधश्रद्धापूर्ण लगीं और उन्होंने इन बातों पर विश्वास न किया। तब पतरस दौड़कर कब्र तक गया और जब झुका तो वहां के कपड़े पड़े हुए देखकर आश्चर्य से भरकर वहां से भागा। उसी दिन यरूशलेम से 12 किलोमीटर दूर इमाउस नामक गांव की तरफ दो व्यक्ति जा रहे थे। वे दोनों उन सभी बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो हुई थी। जबकि वे बातचीत कर ही रहे थे, तभी यीशु उनके पास आए और चलने लगे, लेकिन वे दोनों यीशु को पहचान न पाए। यीशु उनसे बोले,
शोक में डूबे हुए जब तुम चले जा रहे थे तो क्या बात कर रहे थे?
उनमें से एक कलियोपास ने जवाब में कहा,
क्या यरूशलेम में तुम ही एक अजनबी हो और उन बातों से अनजान हो जो इन दिनों में होती रही हैं?
यीशु ने पूछा,
कौन सी बातें?
वह बोले,
यीशु नासरी के बारे में, जो अपनी बातों और कामों में सभी लोगों के सामने शक्तिशाली थे और प्रधान पुरोहितों और अधिकारियों ने क्रूस पर चढ़ाए जाने और जान से मारे जाने के लिए उन्हें सौंप दिया। लेकिन हमारी उम्मीद ये थी कि वे इसराइल देश को आजाद कराएंगे। इन सब बातों को बीते 3 दिन हो चुके हैं। हाँ, हमारी कुछ महिलाओं ने भी हमें हैरत में डाल दिया जब वे सुबह सुबह कब्र पर पहुंची। उन्होंने लाश को वहां ना पाया और यहाँ पर आकर बताया कि उन्होंने स्वर्ग दूतों को देखा, जिन्होंने यीशु के जीवित होने का दावा किया। हम में से कुछ लोगों ने कब्र पर पहुंचते ही वैसा ही पाया जैसा महिलाओं ने कहा था, लेकिन उन्होंने यीशु को देखा नहीं।
तब यीशु ने उन लोगों से कहा,
हे बुद्धिहीनों, नबियों की कही बातों पर मुश्किल से विश्वास करने वालों, क्या ये जरूरी नहीं था कि यीशु तकलीफ उठाएं और अपनी महिमा में दाखिल हों?
तब मूसा और दूसरे नबियों से शुरू करके पूरी बाइबल में जो कुछ उनके खुद के बारे में लिखा था, वह सब कुछ उन्होंने समझा दिया। जैसे जैसे वे अपने गाँव के पास पहुँच रहे थे, यीशु उनसे आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने यीशु को आग्रह करते हुए कहा,
दिन ढल चुका है, रात होने लगी है, हमारे साथ ही ठहरिए।
और यीशु उनके साथ ठहरने को राजी हो गए। जब यीशु उन लोगों के साथ खाना खाने बैठे तो रोटी तोड़कर उन्हें दी, तभी उनको असलियत समझ आ गई। लेकिन उसी समय यीशु वहां से गायब हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा,
जब रास्ते में हम लोग चल रहे थे, तब बाइबल की सच्चाइयों को समझाए जाने के समय हमारे मन में कैसा अजीब एहसास था।
उसी समय वे उठे और यरूशलेम की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन 11 को और दूसरे लोगों को पाया। उन्होंने कहा,
यीशु सचमुच जी उठे हैं और शमौन ने उन्हें देखा भी है।
हुई वारदात के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह रोटी तोड़ी। जाते समय उनके मन में संदेह हो रहा था कि कहीं ये यीशु तो नहीं। जब वे ऐसा कह ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और बोले,
तुम्हें शांति मिले।
लेकिन आश्चर्यचकित होने के साथ साथ वे डर भी गए और उन्हें लगा कि किसी आत्मा को देख रहे हैं। यीशु उनसे बोले,
तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे मन में सवाल क्यों उठ रहे हैं? मेरे हाथों पैरों को तो देखो, मैं ही हूँ, मुझे छुओ, क्योंकि जैसा तुम मुझे देख रहे हो, आत्मा के पास मांस और हड्डी नहीं होती है।
यह कहकर यीशु ने उन्हें अपने हाथ और पैर भी दिखाए। जबकि आश्चर्य और खुशी से वे भरे हुए थे, यीशु ने कहा,
क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है?
उन लोगों ने यीशु को भुनी हुई मछली और मधुमक्खी के छत्ते का एक हिस्सा दिया। यीशु ने उन्हीं के सामने अपने हाथों में लेकर उसे खाया। यीशु ने कहा,
ये वही बातें हैं जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी जब तुम्हारे साथ था। वो ये कि जो बातें मूसा नबियों की किताबों में मेरे बारे में लिखी हैं, वे पूरी होंगी।
तब यीशु ने उनकी समझ को खोल दिया ताकि वे बाइबल समझ सकें। यीशु ने कहा,
ऐसा लिखा है और ये जरूरी भी है कि मसीह दुख उठाए और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। ये भी कि मन बदलाव और पापों की क्षमा के बारे में जो उन्हीं से मिलेगी, यरूशलेम से होकर धरती के आखिर तक रहने वालों को बतलाया जाए। और तुम ही इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, परमेश्वर के वायदे को मैं तुम्हारे लिए पूरा करने वाला हूँ। लेकिन जब तक स्वर्ग से उस शक्ति को ना पाओ, यही इसी नगर में ठहरो।
बेतनिया तक यीशु उनको ले गए और अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते हुए वे उन लोगों के बीच से आसमान पर उठा लिए गए। उसके बाद शिष्य यीशु की बड़ाई करते हुए बड़ी खुशी से यरूशलेम चले गए और प्रार्थना भवन में तब से परमेश्वर की बड़ाई करने में जुट गए।